आज रात फिर से भवन में होने के लिए इस अद्भुत संगति में अपेक्षा करने के लिए और परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द आराधना करने जो हमें स्वतंत्र रूप से दिया गया है और हम इस आशीष के भागीदार होने को पसंद करते हैं और मुझे केवल इस बात पर भरोसा है कि परमेश्वर आज रात हमें आशीष देगा जैसा उसने आज सुबह किया सुबह के संदेश के साथ। और मैं अभी कुछ समय पहले अपने पड़ोसी श्रीमती वुड से बात कर रहा था और हम इस पर श्रीमान वुड और उनसे चर्चा कर रहे थे और मैं सोचता हूँ कि भाई नेविल जो उन सभी उत्तम उपदेशों में से सबसे अच्छा उपदेश था जिसका उसने प्रचार किया है, यह वो एक उपदेश था जो मेरे लिए किसी से भी बेहतर था जिसका उसने अब तक प्रचार किया है। मैंने निश्चित रूप से उस अद्भुत उपदेश की प्रशंसा और सराहना की और इसने मुझे हिम्मत दी और इसने मुझे काटा छाटा, इसलिए मैं सच्चाई को स्वीकार करना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं तो साहसी भागों के विषय में आप जानते हैं साहसी होना और कैसे दाऊद वहाँ था और किस तरह से वो जब उस बड़ी परीक्षा में ये कहने के बजाय अच्छा मैं ऐसा करूँगा प्रभु आप बस मेरी सहायता करें, वो रुका रहा जाकर और प्रभु से पूछा कि क्या करना है। वो अपोध को नीचे लाया आप जानते हैं और कहा अब आओ खड़े होकर और परमेश्वर से पूछे इस संकट स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ओह वो वास्तव में शानदार था। उस देश में जितने भी सारे दवा के भंडार थे उससे कहीं अधिक विटामिन थे। हाँ श्रीमान ये वास्तव में आपके लिए अच्छा करता है। अब आज रात हमारा लक्ष्य मध्य रात्रि से अधिक रुकने का नहीं है यदि हम कर सकते हैं इन प्रश्नों पर, इसलिए हम तुरंत ही सीधे इसके अंदर जाएंगे। यह इन प्रश्नों को समाप्त करता है और हर बार जब मैं उन्हें समाप्त करना आरंभ करता हूँ। अब बहन हेटी मेरा यह मतलब नहीं था, आप यह जानते हैं, मैं बस इतना ही कह रहा था देखो और तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ एक सेवक से कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न मिले हैं और उनका उत्तर देना सचमुच मुश्किल है। आप जानते हैं वे प्रचारक वे इसे बाइबल में से होकर घुमाते हैं और इससे पहले कि वे आपसे पूछें वे उनका खुद का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। आप देखें और तब और ये टेप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे एक सेवक मित्र के पास वहाँ जॉर्जिया जाएगा जिसके पास 8 बिल्कुल हटकर बाइबल के प्रश्न हैं जो बहुत ही कठिन हैं। और अब इस आने वाला सप्ताह भूलना नहीं और हमारे लिए प्रार्थना करना। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो अभी वहाँ पर है और उसने आज खाना बनाने में सहायता की। कनाडा के हमारे प्रिय मित्र भाई बहन सॉथमैन यहाँ हमारे साथ भेंट करने आ रहे हैं और हम निश्चित रूप से उनकी भेंट की सराहना करते हैं। और मेरी पत्नी यह जानते हुए कि वे आ रहे हैं इसलिए उसे वहाँ पर होना था जिससे कि वो इन प्रिय मसीह लोगों के लिए कुछ सत्कार कर सके और संगति कर सके। हम आज रात भाई फ्रेडी को हमारे साथ पाकर खुश हैं और वो साथ रही, वो आज सुबह यहाँ थी लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह साथ रही नहीं, यह सही है वह मेडा के साथ है। जिस समय हम नीचे आए उसे उसके साथ होना था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज रात थोड़ी देर हो जाएगी, यह प्रभु भोज और पैरों का धोना है। सो हम उन्हें और मेहमानों को हमारे साथ पाकर खुश हैं। अब इससे पहले कि हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास आरंभ करें और केवल इतना याद रखना कि मैं गलत हो सकता हूँ। आप देखिए मैं जो कुछ भी करता हूँ उस पर मैं सही होने का दावा नहीं करता, मैं सही होने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ और यदि मैं गलत हूँ तो आप बस मुझे क्षमा करें और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर भी क्षमा करेगा क्योंकि मेरा अर्थ गलत होना नहीं है। मैं उनका उत्तर देने की कोशिश बस ऐसे ही नहीं करता या जिस तरह से मैं बस पक्षपात करने के लिए मैं उनका अपनी पूरी जानकारी के अनुसार उत्तर देता हूँ। देखो और यदि मुझे बाइबल के एक प्रश्न पर अपने विचारों को हेर फेर करना है मैं सोचता हूँ यही है तो बस मुझे करना है। हमें किसी भी समय फेर बदल करना चाहिए जब परमेश्वर का वचन बोलता है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। और अब मैं सोचता हूँ कि हम हमेशा की तरह आज रात फिर से बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और कभी कभी आप बस सोचते हैं आप इस तरह के एक छोटे से झुंड के जैसे लेते हैं इससे भी कम, ओह यहाँ छोटा सा भवन, और कभी कभी आप उस परिणाम को नहीं देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज आप जो कर रहे हैं वो आप बस लगभग 200 लोगों से खींचे जा रहे हैं और बड़ी सभाओं में से एक हो सकता है कि आप 3 से लेकर 10,000 तक कहीं से भी खींचे जा रहे हों, आप देखते हैं और हो सकता है अधिक, तो इसी तरह से आपको और अधिक बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। लेकिन आज रात मैं केवल उत्तर को दे रहा हूँ, अवश्य हमारे फोन की घंटी हर समय कुछ मिनटों में पूरे दिन बजती रहती है और कभी रात के समय में। क्या ये श्रीमती रिसर्ट यहाँ बैठी हुई है? मैं जिसकी ओर देख रहा हूँ, आपकी बाइबल बहन वुड के पास है, वो वहाँ पीछे है। मैं इसे आज सुबह आपके लिए लाया हूँ और मैं इसे आपको नहीं दे पाया और मैंने आपको आज सुबह नहीं देखा और ये श्रीमती वुड के पास है। तो फोन का उत्तर देना और उन महान कामों के लिए देख रहे हैं जो किए गए हैं। एक महिला ने मुझे फोन किया, उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं एक फलाना फलाना सभा में थी और मैं इतने लंबे समय से फलाना फलाना परेशानी से कष्ट को सहन कर रही थी और आप जानते हैं आपने उस वक्त वहाँ पर बात की और तब कहा, मैं लगभग बेहोश हो गई थी जब इसने बस पिछले जीवन को सामने लाया और कहा, और मैं तब से लेकर कभी भी पीड़ित नहीं हुई। और एक महिला अंदर आई और कहा, मैं सोचता हूँ कि वो आज रात यहाँ पर है या वो बेडफोर्ड से गाड़ी चलाकर जा रही थी, मैं सोचता हूँ या ऊपर कहीं से। तो मैं सोचता हूँ कि उसका बेटा यहाँ था जिसे हृदय की बीमारी थी, बहुत ही बुरी हालत में था और वो यहाँ सभा में बैठा था और प्रभु ने घूमकर और छुआ, लड़के से उसकी तकलीफ के बारे में बताया और वो मुश्किल से अपने हाथ को ऊपर उठा सकता था और एक दिल का दौरा पड़ा और उसका हाथ पूरी तरह मरोड़ गया था और उसका हृदय इस तरह से था और तुरंत ही वो कार में जाकर बैठ गया और चलाकर घर गया। उसके बाद से कभी भी इसकी तकलीफ नहीं हुई। क्या वो महिला यहाँ बेडफोर्ड से आई है? महिला, क्या आप यहाँ हैं? वहाँ है वो, पीछे की तरफ। हाँ, उसने अभी कुछ समय पहले मुझे फोन किया था। फिर नीचे इवांस विले से एक महिला ने मुझे फोन किया और वो यहाँ नहीं पहुँच सकी क्योंकि वो बहुत दूर है, नहीं जानती थी कि हम चंगाई की आज रात को सभा करने जा रहे हैं। और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं इवांस विले सभा में बैठी थी और कहा, आपने वहाँ भीड़ की ओर देखा और कहा, मुझे बताया कि मैं कौन थी और मैंने क्या किया था और मैं जो परेशानी में थी और इसी तरह से इत्यादि। और उसने कहा, मुझे वो दमे की बीमारी थी और मैं जब छोटी थी तब से लेकर अस्थमा का पाउडर और इत्यादि कमरे में जलाना पड़ता था। कहा, इसको 2 वर्ष हो गए हैं और तब से मुझे इसका कभी भी लक्षण नहीं मिला है, समझे। और केवल उनके लिए जो आज रात यहाँ पर हैं, जो आज सुबह या गवाही का आनंद लेने के लिए नहीं थे, मैं कल 10 सेंट की दुकान पर गया था एक गुड़िया को खरीदने। अब ये मेरे लिए नहीं थी, देखो, यह मेरी छोटी लड़की रिबिका के लिए थी और सारा आज कहीं तो और जा रही थी। उसके कुछ छोटे स्कूल में साथ पढ़ने वालों का किसी तरह का एक साथ एकत्र होना था, जन्मदिन या कुछ तो और था, और वह उसके लिए छोटा सा उपहार लेकर गई थी और मैं छोटी सी गुड़िया खरीद रहा था लगभग इतने समय से। और वहाँ एक महिला चलकर आ रही थी, उसने कहा, आपने मुझे पहचाना? और मैंने कहा, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने पहचाना। और ये पता चला यह यहाँ भाई नेविल के रिश्तेदार थी। इसके बारे में जब मैं स्वीडन के रास्ते में था, वो यहाँ पर आई, उसके साथ व्हील चेयर में एक छोटा लड़का था, बिल्कुल जैसे छोटा एडिट वहाँ पर है। और उस छोटे लड़के को कैंसर था, मस्तिष्क पर प्राण घातक विकसित हो रहा था और उसका छोटा सा सिर नीचे झुका हुआ और वो और डॉक्टरों ने उसे जीने के लिए केवल 3 हफ्ते ही बताया। उन्होंने इसे बाहर निकाला और इस रोग की जांच की और देखा कि यह वो क्या था और उसे जीने के लिए बस 3 सप्ताह ही बताए और उन्हें उसे व्हील चेयर पर बैठा कर यहाँ वहाँ ले जाना पड़ता था और तब उसे स्ट्रेचर में डाला। जब उसे कमरे में ले गए और उसकी जांच की और फिर उसे वापस नीचे ले आए, जाकर और उस छोटे से लड़के के लिए प्रार्थना की और प्रभु से उसे चंगा करने के लिए मांगा। और दूसरे ही दिन पर जब वे उसे वहाँ ले गए तो उसने कहा, मुझे वो व्हील चेयर नहीं चाहिए। उसे कार में बैठा कर और वहाँ पर लेकर गए और डॉक्टर ने स्ट्रेचर को खोला। उसने कहा, मुझे वो स्ट्रेचर नहीं चाहिए। वहाँ दौड़ कर गया और बैठ गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, कहा, ठीक है, कहा, बजाय 3 सप्ताह के मैं तुम्हें 108 वर्ष देने जा रहा हूँ जो तुम जीने जा रहे हो। और कल उसकी माँ मुझसे मिली और हो सकता है वो यहाँ हो क्योंकि जहाँ तक आज रात जानता हूँ। और छोटा लड़का बाहर फुटबॉल खेल रहा था जो अब एक जवान पुरुष है, प्राण घातक, मस्तिष्क पर कैंसर, और यह सिर्फ दिखाता है, ओह, हजारों चीजें। देखो, परमेश्वर असफल नहीं हो सकता, वो बस असफल नहीं हो सकता। भाई जॉन, क्या आपकी आंख बेहतर है? भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह एक कील को ठोक रहा था और उसकी आंख में चला गया और हम सब भाई जॉन ओ बैनन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लुइस विले के हमारे भाई जिनकी आंख में कील लगने से दुर्घटना हो गई थी। अब ये प्रश्न किसी के तो हृदय की उस गहराई से हैं कि वे वचनों में से पढ़कर और इन बातों को ढूंढते हैं और वे नहीं हो सकता है, वे खुद को संतुष्ट नहीं कर पाते, इसलिए वे हमें उत्तर देने का प्रयास करने के लिए उन प्रश्नों को यहाँ सौंप देते हैं। और आप देखते हैं कि यह हमें किस कठिन परिस्थिति में डालता है, क्योंकि आप जो बताएंगे वे उसी पर बने रहते हैं। तो आपको अवश्य ही पक्का होना चाहिए कि आप सही हैं और मैं जितना आप सुनिश्चित हो सकते हैं। तो फिर ये बात निश्चित होना है कि हम सही हैं। आइए हम अभी पवित्र आत्मा से हमारे लिए इसका अनुवाद करने के लिए मांगे जबकि हम हमारे सिर को झुकाते हैं। अब स्वर्गीय पिता, ओह यह क्या ही सौभाग्य की बात है पिता, आकाश और धरती के महान सृष्टिकर्ता, और हम सिर्फ इतना मांगते हैं कि आप इन प्रश्नों को अब अपने खुद के देखरेख में लेंगे। उन्होंने ईमानदारी की गंभीरता के साथ यहाँ पर दिया था। परमेश्वर यह हमारे हृदय से ईमानदारी की गंभीरता से उन्हें सबसे अच्छा उत्तर दे जो हम जानते हैं कि कैसे देना है, इसे प्रदान करें और होने पाए आपकी दया हर एक पर बनी रहे और होने पाए आज रात यहाँ कुछ ऐसा कहा जाए जिससे वहाँ उपस्थित सभी लोगों की सहायता हो। और बीमारों के लिए प्रार्थना के बाद जब हम जाते हैं और प्रभु बोझ और आदि को लेते हैं, होने पाए हम उन लोगों की तरह कहें जो इमाउस से आए थे, या रास्ते में जब वो हमसे बात कर रहा था हमारे हृदय हमारे भीतर उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि यह यहाँ उनके बारे में मेरी सबसे अच्छी राय है, और फिर कभी कभी यह थोड़े वाद विवाद को ऊपर लाता है। यहाँ यह पहला प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले बताया है, जो इसे फिर से सौंपा गया है, मैं नहीं इसे अब पढ़ना चाहता हूँ यदि आप चाहें तो। अब अदन में आदम और हवा के बच्चे थे तो क्या उस समय धरती पर दूसरे लोग भी थे? उत्पत्ति के 5वें अध्याय और 16वें पद में केन नोत के देश में रहा और अपनी पत्नी के पास गया। अब यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमें बाइबल में सिखाया गया है, और बहुत सी बार ये कभी कभी हम लापरवाही पूर्व, मैं हमेशा कागज की एक छोटी सी पर्ची लगाता हूँ और कहता हूँ पूछो बाइबल के किसी भी प्रश्न के उत्तर को, और किसी ने कहा तो ठीक है केन की पत्नी कौन थी, और मैं इसके साथ थोड़ा मजाक करता या ऐसे ही कुछ, और मैं कहता ओह वह उसकी सास की बेटी थी या ऐसा ही कुछ, तो आप जानते हैं, या वो श्रीमती केन थी। लेकिन यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। वहाँ केन की एक पत्नी थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी थी, और यदि केन की पत्नी थी तो उसे कहीं और से उसे लेना था, और यह ठीक यहाँ पर पंक्तिबद्ध होगा। क्या उस समय धरती पर दूसरे लोग भी थे जब अदन में आदम और हवा उनके बच्चे थे? अब यदि आप ध्यान दें तो बाइबल में शायद ही कभी किसी स्त्री के जन्म के होने के बारे में बताया गया है। यह हमेशा पुरुष बालक होता है जिसे उन्होंने बाइबल में दर्ज किया है, ना ही स्त्री। बाइबल में शायद ही कभी एक लड़की के जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है, या स्पष्ट रूप से मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस वक्त मन में एक को सीधे याद कर सकूंगा जहां ये कभी बच्चे के जन्म को दर्ज किया है, कहा उन्हें पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। अब बाइबल केवल आदम और हवा के 3 बच्चों के जन्म का अभिलेख देती है, और वे केन, हाबिल और शेत थे। अब यदि उनमें से तीनों पुरुष हैं, यदि कोई स्त्री नहीं जन्मी थी, और उस वक्त जब एकमात्र स्त्री हवा मर गई, तब तो मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया होगा, क्योंकि उनके लिए कोई जरिया नहीं था कि उनके पास मनुष्य जाति को आगे बढ़ाए, क्योंकि वहाँ कोई स्त्री नहीं बची होगी, केवल हवा ही एक होती। लेकिन आप देखते हैं वे उन लड़कियों के जन्म का उल्लेख नहीं करते हैं बाइबल में, इसलिए उनके पास जितने लड़के थे उतनी ही लड़कियां होनी थी। अब पुराने लेखक, जो हमारे पास सबसे प्राचीन लेखकों में से एक है, जोसफस, उसका दावा है कि उनके 70 बच्चे थे, और आदम और हवा, जो सबसे पुराने लेखकों में से एक है, 70 बच्चे थे और वे पुत्र और पुत्रियां दोनों थे। अब यदि और फिर यदि केन नोत के देश में चला गया, अब यदि आप ध्यान दें, लेखक ने यहाँ बहुत बहुत ही शानदार लेखन को किया था। क्या आपने ध्यान दिया कि उसने इसका किस तरह हवाला दिया? अदन में जब उनके बच्चे अदन में थे, अब अदन की वाटिका में नहीं, लेखक ये जानता था। कभी जिसने यहाँ लेख को लिखा कहा, अब अदन में आदम और हवा के पास उनके बच्चे थे, ना ही अदन की वाटिका में, क्योंकि उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, लेकिन वे अब भी अदन में थे और अदन की वाटिका अदन के पूर्व की ओर थी, लेकिन अदन एक प्रांत की तरह था या एक राज्य, और फिर नोद दूसरा राज्य या प्रांत था। अब केन केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था या उससे विवाह किया जो उसकी अपनी बहन होनी चाहिए थी। उसे करना था क्योंकि वहाँ केवल एक ही नर और नारी है जिससे वे आ सकते थे, देखो, और उसे अपनी खुद की बहन से विवाह करना था। अब ऐसा उन दिनों में वैध था, और इज़ाक ने अपनी पहली लहू के रिश्ते की चचेरी बहन रिबिका से विवाह किया, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। सारा अब्राहम की बहन थी, जो उसके लहू के रिश्ते की बहन थी, उसकी माँ से नहीं थी, उसके पिता से थी। देखो, एक लहू की बहन जिससे अब्राहम ने विवाह किया, माँ अलग थी लेकिन पिता एक ही था। तो आप देखते हैं, उस वक्त रिश्ते में विवाह करना या मनुष्य जाति में वो लहू का प्रवाह कमजोर होने से पहले था, यह वैध था और ये चलता था। अब ऐसा नहीं है। यदि आप आज अपनी बहन से शादी करते हैं और आपके बच्चे होते हैं, तो शायद वे बस विकृत या कुरूप हो जाते हैं और इत्यादि। यहाँ तक कि पहले और दूसरे चचेरे भाई से भी विवाह नहीं करना चाहिए। देखो, क्योंकि लहू का प्रवाह कम होता जा रहा है और धीमा चलता है। लेकिन तब केन केवल यही कर सकता था और अपनी खुद की बहन से विवाह करना था, और यही है जहाँ बच्चे उससे अपनी पत्नी को लिया और नोन के देश में गया और उससे एक हुआ और वहाँ से वे बालक आ गए। देखो वो, और यदि आप ध्यान दें तो केन के वंश में से तेज बुद्धि के पुरुष आए, सेत के वंश से धार्मिक पुरुष आए, मेरा मतलब है वो धार्मिकता की डाली। ठीक यहाँ पर उन दोनों ने उसी वंश को आगे लाया जिसमें हम आज जी रहे हैं। यदि आप आज ध्यान देंगे, बस इस प्रश्न को समाप्त करते हुए, केन का वंश अब भी अस्तित्व में है और शेत का वंश अब भी अस्तित्व में है, वे दोनों उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। केन के बच्चे आज रात यहाँ जेफरसन मिले में हैं और सेत के बच्चे आज रात यहाँ जेफरसन मिले में हैं। जैसे जैसे लहू का प्रवाह कमजोर होता है और बाहर निकलता जाता है, लेकिन वह वंश अभी भी बना हुआ है। अब देखना, केन के बच्चे हमेशा से थे, और प्रलय पूर्व विनाश से पहले वे तेज बुद्धि के लोग थे, वे वैज्ञानिक, शिक्षक और बहुत ही धार्मिक, लेकिन दोषी ठहराया हुआ झुंड था, समझे। अब देखो, वे अपने पिता केन के जैसे ही थे। केन वो एक धार्मिक पुरुष था, उसने एक सुंदर वेदी बनाई और एक सुंदर कलीसिया बनाई, और उस छोटे से मिशन से भी बढ़कर इसे सुंदर बनाने की कोशिश की जो वहाँ सेत के पास थी। क्या आप ये जानते हैं, उसे यकीनन उसने वेदी को फूलों से सजाया और उसे सुंदर बनाया और उसे आकर्षित बनाया, और उसने एक विशाल बड़ी सुंदर कलीसिया बनाई, क्योंकि उसने सोचा था कि ऐसा करने से वह परमेश्वर की कृपा को पा सकता है। और हाबिल वहाँ पर गया और उसने एक छोटा मेमना लिया और उसने इसे वेदी पर खींचकर लाने लगा और चट्टान पर रखकर और इसे घात किया। और अब यदि परमेश्वर न्यायी है, यदि उसे केवल आवश्यकता थी आराधना की, तो केन ने परमेश्वर की आराधना उतनी ही ईमानदारी से की जितनी हाबिल ने की थी। दोनों ईमानदार थे, वे दोनों परमेश्वर से अनुग्रह पाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कोई एक भी नास्तिक नहीं था, वे दोनों ही पूरी तरह से यहोवा में विश्वासी थे। अब वहाँ यह हमें कुछ तो सोचने के लिए बताता है। यहाँ आज रात कुछ लोग हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आपको इसे समझना अवश्य है और इसे अपने दिमाग में रखना है, समझे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी धार्मिक हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है कलीसिया में रहते हो, आप हो सकता है बहुत ही ईमानदार हो, और आप फिर भी नाश हैं, समझे। और आप कहते हैं तो ठीक है, आप कहते हैं हमारे पास्टर सबसे तेज बुद्धि के हैं, वे धर्म विद्यालय में से होकर आए हैं ताकि बेहतर शिक्षा को प्राप्त करें, वे धर्मशास्त्री हैं, वे सारे धर्म ज्ञान और इत्यादि को जानते हैं, और वे तेज बुद्धि के हैं, प्रशिक्षित हैं, बहुत चुने गए सर्वश्रेष्ठ जन हैं जिसे हम जानते हैं, और वे फिर भी नाश हो सकते हैं, समझे। अब केन उसके वंशावली पर, वे हर एक बहुत ही धार्मिक थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोग, और वे वैज्ञानिक थे, और डॉक्टर थे और बनाने वाले और काम करने वाले और तेज बुद्धि के लोग थे, लेकिन केन से लेकर नीचे तक वे सारे वंश अस्वीकार कर दिए गए थे। और हाबिल की तरफ से वे न तो बनाने वाले थे और न ही शिक्षक या तेज बुद्धि के लोग थे, वे लगभग नम्र एक प्रकार के भेड़ को चढ़ाने वाले और किसान थे जो आत्मा के अनुसार चलते थे। अब बाइबल ने कहा उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मिक मनुष्य के पास एक आत्मिक प्राण होता है जो कभी नहीं मर सकता, और शारीरिक मनुष्य के पास उसके चारों ओर एक धार्मिक वातावरण होता है और आराधना और आदि करना चाहता है, लेकिन वो शारीरिक है, ना ही एक अविश्वासी लेकिन एक शारीरिक विश्वासी, और यह उस प्रकार का था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। अब वहाँ से केन ने जाकर अपनी पत्नी से नोंद के देश में विवाह किया। अब यह नहीं बताता है कि सेत ने किससे विवाह किया या दूसरों ने किससे विवाह किया, और इसकी सबसे सुंदर बात यह जानना है कि केन विवाह कर रहा है। हमारे पास इसका उत्तर है क्योंकि उसे अपनी बहन से विवाह करना था, या वो या कोई होता, वहाँ धरती पर कोई और स्त्री नहीं थी लेकिन केवल हवा से ही आना था। वे सारे जीवतों की माता थी, यानी जितने भी लोग जी रहे थे वो उनकी माँ थी। यही कारण है कि वो उस हवा शब्द का अर्थ होता है जीवतों की माता, और उसने आकर और इस बालक को उत्पन्न किया, और केन ने अपनी बहन से विवाह किया। यही एकमात्र जरिया होगा जो मैं इसमें से देख सकता हूँ। तो वास्तव में उस दिन में रहने वाले लोग थे, समझे, ठीक है। और जब आदम और हवा के अदन में बालक हुए, अब देखिए यही है प्रश्न, जब अदन में उनके बालक थे तो क्या उस समय पर धरती पर और लोग भी थे? नहीं। तब उत्पत्ति 5:16 में आप देखते हैं केन नोन देश में रहा और अपनी पत्नी के पास गया, निश्चय ही देखा। यह उत्पत्ति 1 है जहां उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया जो कि दैवी शरीर में था, और उत्पत्ति 2 में उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी में से बनाया जो कि मानव मनुष्य था जो कि अब हम हैं, और फिर 3 में वो गिर गया था और अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और उसके बाद संतानों ने संतानों को उत्पन्न किया, और केन ने अपनी पत्नी को लिया और उसके साथ नोन देश में रहने लगा बाहर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके खुद के भाई के साथ संगति से अलग किया था हाबिल की मृत्यु के कारण, और यही है उसकी जो अपनी बहन थी और उससे विवाह कर लिया। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं देख सकता हूँ कि कैसे उसने विवाह कर लिया। अब यह कहा गया, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे अश्वेत मित्र जो यहाँ हैं इस टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से सही बात नहीं है। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी से मिला था, मेरे परिवर्तित होने के बाद मैं भाई जॉर्ज डियार्क से और वहाँ उन लोगों से मिला, और मैं चल पड़ा और प्रभु मुझे एक छोटे से स्थान पर लेकर गया, और वे बात कर रहे थे कि अश्वेत मनुष्य कहाँ से आया है, और वे कहने की कोशिश कर रहे थे कि अश्वेत मनुष्य उस केन ने वानर जैसे जानवर से विवाह किया और वहाँ से अश्वेत जाति आगे आई। अब यह गलत है, पूरी तरह से यह गलत है, और उस बात के लिए कभी खड़े मत होना क्योंकि कोई अश्वेत या श्वेत या कोई अन्य दूसरा भिन्न नहीं था। यह जल प्रलय के निमित्त लोगों की सिर्फ एक जाति है। फिर जल प्रलय और बाबुल के गुम्मट के बाद जब वे तितर बितर होने लगे, यही है जब उन्होंने अपने अपने रंग और इत्यादि को लिया, वे सभी एक ही पेड़ से आए हैं। यह बिल्कुल सही है, आदम और हवा पृथ्वी पर के पिता और माता थे। मनुष्य जाति की हर एक जीवित सृष्टि जो कभी धरती पर रही है, ये सही है, काला, सफेद, पीका, भूरा, पीला, चाहे आप किसी भी रंग के हों, यह बिल्कुल वही स्थान है जहां आप रहते हैं, और जिस तरह से वो बिल्कुल इसके जैसा, मैं सोचता हूं कि मैं इस पर रहते हुए इसे व्यक्त कर सकता हूं। यहां के लोग अब इन अलगावों और कानूनों और बातों से होकर गुजर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह मूर्खता पूर्व है, मैं सच में सोचता हूं। सुनना, बस इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने एक मनुष्य को एक अश्वेत मनुष्य बनाया और वो इससे खुश है पूरी तरह से। यदि परमेश्वर मुझे एक अश्वेत मनुष्य बनाता है तो मुझे इस पर खुशी होगी, यदि वो मुझे बुरा मनुष्य बनाता है तो मुझे खुशी होगी, यदि वो मुझे श्वेत मनुष्य बनाता है तो मैं खुश हूँ, यदि वो मुझे पीला मनुष्य बनाता है तो मुझे खुशी होगी। परमेश्वर ने हमें हमारे रंगों में बनाया और उसने हमें वैसा ही बनाया जैसा वो हमें चाहता था, और हम सब उसके बच्चे हैं बिल्कुल। और उन्हें वाद विवाद करके और इस तरह से बहस नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बनाया जिस तरह से हम इसे चाहते हैं। और अश्वेत मनुष्य वो वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता है और उसकी पीढ़ी को या उसके रंग को तोड़ना नहीं चाहता, और इसे सफेद और इसी तरह से हरे के साथ मिश्रित ना करें। मैं उसे दोष नहीं देता, मैं नहीं देता। अश्वेत मनुष्य के पास ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ तक श्वेत मनुष्य के पास भी नहीं होती। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही बात है। और परमेश्वर का उन्हें इस तरह से करने का कोई भी इरादा नहीं किया था। तो देखना, अश्वेत मनुष्य वो एक उसके पास उसके विषय में एक प्रकृति है जो श्वेत मनुष्य के पास कभी नहीं होती है। वो एक संयोग वंश है। एक परमेश्वर पर भरोसा रखना और बाकी को छोड़ दो, चाहे उसे ये मिले या चाहे उसे ना मिले, वो किसी भी तरह खुश रहता है। मैं आज रात उनमें से बहुत कुछ लेना चाहूँगा, मैं यकीनन ले लूँगा। ठीक है, उसे ये मिला है और यही उसका अधिकार है। वे इसे किसी अन्य जाति के साथ मिश्रित नहीं करना चाहते हैं और न तो इसे तोड़ना या खत्म करना चाहते हैं। यह बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि शिव रिपोर्ट में नीचे उस महिला ने एक सबसे श्रेष्ठ टिप्पणी को दिया जो मैंने अपने जीवन में अब तक की सबसे अच्छी टिप्पणियाँ सुनी हैं। उसने एक टिप्पणी की और उन्होंने उसे अखबार में डाल दिया। वह ऊपर चल कर गई। उसने कहा, जिस तरह से ये चीजें यहाँ चल रही हैं, इस अलगाव करने में, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वहाँ उस श्वेत बच्चों के स्कूल में जाएं। कहा, यदि उनके पास एक अश्वेत शिक्षक होगा तो वे उसे ध्यान नहीं देंगे। वो महिला एक तेज बुद्धि की महिला है। वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रही है। उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है। यह बिल्कुल सही है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसा करके गलत करते हैं और फिर वे कहते हैं केन और हाबिल और इसी तरह से इत्यादि। नहीं महाशय, रंग का इससे कोई लेना देना नहीं था। यह तो वहाँ अंदर वो आत्मा है जिसका इससे कुछ लेना देना है। यह बिल्कुल सही है। इसलिए केन अपनी पत्नी को जानता था और वह उसकी बहन थी, और वह उसे नोन देश में ले गया और वहाँ धरती के बड़े गोत्र आगे आए, धर्मवादी और आराधना करने वाले। और आज सोचो मित्र, बस रुककर और बस कुछ क्षण के लिए सोचो कि वहाँ पूरी तरह से कलीसिया जाने वाले लोगों में से दसियों हजार बार दसियों हजार और हजारों हजार हैं, बस उस कलीसिया के प्रति उतने ही ईमानदार और समर्पित होते हैं जितने वे हो सकते हैं। वो उतने ही नष्ट हैं जितना कि केन था। देखा, यह तो परमेश्वर है जो चुनता है। यह परमेश्वर है जो चुनाव करता है। देखा, परमेश्वर जो दया देने वाला है। मिट्टी कुमार से नहीं कह सकती, यह मिट्टी के ऊपर कुमार होता है। यह सही बात है। अब यहाँ एक सुंदर है, अगला यहाँ है, दूसरा पत्रस 2:4 में। किसी के पास बाइबल है, इन वचनों को तुरंत ही खोलना चाहूँगा जब मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, यदि आप चाहें तो। और यहाँ साथ ही मेरी सहायता करें जब हम इस प्रश्न को लेते हैं। अब इस केन और इत्यादि पर यदि वो इसे अभी संतुष्ट नहीं कराता है तो आप हमें इसे लेने दें, हमें खुशी होगी। अब दूसरा पत्रस 2:4, ठीक है महाशय, हम यहाँ हैं। दूसरा पत्रस 2:4, क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले दूतों को न छोड़ा वरन उन्हें अधोलोक में डाल दिया, तब पहला पत्रस 3:19 में मसीह ने बंदीगृह में आत्माओं को क्यों प्रचार किया। अब हम पत्रस 2:4 पहले लेंगे तो ठीक है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया लेकिन नरक में नीचे भेज दिया और अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। अब आइए पहला पत्रस में देखेंगे, ये दूसरा पत्रस है। पहला पत्रस 3:19, इसे सुनना, यहाँ हम हैं, ठीक यहाँ पर। ये अभी मन में आया, कारण मैंने उन्हें लिख कर नहीं रखा था। उसी में उसने जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ओ हाँ, हम यहाँ हैं। आइए उससे थोड़ा पहले आरंभ करते हैं, 18वां पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने भी जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अब अगला पद पढ़ते हैं और वहाँ उसने इसे समझाया है, देखा, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जिस समय वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। देखा, अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रचारक के पास एक और है, उसी पंक्ति पर कुछ तो थोड़ी देर बाद उत्तर दिया जाएगा। पहला पत्रस 4:2-4, यदि आप ध्यान दें, क्योंकि यदि परमेश्वर ने दूतों को नहीं छोड़ा, उस दूत का उच्चारण किस तरह से है, छोटा ए, देखा, अब यहाँ पर वे आत्माएं जो बंदीगृह में थी, जिन्होंने नूह के दिनों में धीरज धरते हुए मन नहीं फिराया, वही वे दूत, ये पुरुष थे, संदेशवाहक, प्रचारक, दूतों को नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि एक दूत शब्द उस एक संदेशवाहक शब्द से आया है? कितने लोग जानते हैं कि दूत संदेशवाहक होता है? बिल्कुल, एक संदेशवाहक दूत है और उसने दूतों को नहीं छोड़ा। देखा, और यहाँ इब्रानियों में आपको याद है कि हम कुछ सप्ताह पहले इसमें से होकर गए हैं, वे दूत, और वहाँ पर वो प्रकाशित वाक्य में सर्दिस की कलीसिया के दूत को ये बातें लिख, इफिसस की कलीसिया के दूत को ये बातें लिख, कलीसिया के दूत के लिए, ये याद है। और हम दूत शब्द को वापस देखते हैं और शब्द कोश से, और देखते हैं कि इसका अर्थ एक संदेशवाहक होता है। यह हो सकता है धरती पर एक संदेशवाहक हो, एक अलौकिक संदेशवाहक, वो शब्द दूत। तो इस दशा में यदि हम शब्द कोश लेते हैं और इसे वापस देखते हैं, आप पाएंगे कि यह संदेशवाहक प्रथम संदेशवाहकों से आरंभ होता है। देखो, यदि उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि यदि परमेश्वर ने पाप करने वाले दूतों को नहीं छोड़ा, देखा, और अलौकिक जीव, देखा, रुके रहने के बाद, अब देखो, उसने कहा, यदि परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, लेकिन नरक में भेज दिया और अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहें। फिर पहला पत्रस 3:19 को यहाँ फिर से देखें, यह अब किस तरह से बताता है, क्योंकि उसी में उसने जाकर और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, देखो, यह उस समय के संदेशवाहक थे, संदेशवाहक, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब यदि आप ध्यान दें कि जब वे जीव स्वर्ग में थे, अब वहाँ प्रकाशित वाक्य 11 में या 7वां अध्याय, मैं सोचता हूँ, या नहीं, यह 12वां अध्याय है, वह स्त्री की तस्वीर को बताता है जो खड़ी हुई है, उसके सिर पर चांद और सूरज, मतलब उसके सिर पर सूर्य और उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था, और लाल अजगर बालक के जन्म लेते ही उसे निगल जाने को खड़ा हुआ था, और उसने अपने पूंछ को लिया और आकाश के तारों में से एक तिहाई को खींचकर धरती पर डाल दिया। क्या आपने इसे ध्यान दिया? अब इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान के पास एक लंबी पूंछ है जिसे उसने लोगों के चारों ओर डाल दिया है, लेकिन जो कहानी उसने बताई और उन तारों में से एक तिहाई भाग को खींच लिया, वे तारे अब्राहम के बीच थे। अब्राहम ने कहा, ओह, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश की ओर देख और तुझसे हो सके तो तारों को गिन। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा, न ही तुम अपने बीच की गिनती कर पाओगे। तारे, चमकता और भोर का तारा कौन है? नासरत का यीशु, सबसे चमकदार जो कभी मनुष्य शरीर में रहा था, वो चमकता और भोर का तारा है, और वो अब्राहम का बीज है जो इजाक में से होते हुए आता है। और हम मसीह में मरे हुए अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। तो स्वर्ग के तारों ने यहाँ मनुष्य की आत्माओं का प्रतिनिधित्व किया, और जब लाल अजगर रोम उसके सतावट के नीचे दो तिहाई में पकड़ लिया, मतलब एक तिहाई तारों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे डाल दिया, जो हमारे प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने के समय थे, जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था और वो और उसे बाहर कर दिया, और उसका उससे कुछ लेना देना न था। दूतों का वह तीसरा भाग था जो दूत जीव थे। देखिए, आपके देह में, आपके अंदर हमें सीधे उस पर एक और प्रश्न है इसका बेहतर उत्तर देने के लिए। तो कब आपके भीतर एक आत्मा है, दूसरा मनुष्य है, आपके बाहर एक मनुष्य है, आपके भीतर दूसरा मनुष्य है। तो आपके भीतर है वो अलौकिक है, आपका बाहरी वो भौतिक है, देखा। और ये प्राणी, यदि आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा, तो आप परमेश्वर के संदेश वाहक या एक दूत बन जाते हैं। परमेश्वर का संदेश वाहक, परमेश्वर का दूत, ये वही शब्द है, इसे अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर का संदेश वाहक या परमेश्वर का दूत, और किसका अधिकार सबसे बड़ा है, स्वर्ग से एक दूत का या पुलपिट पर एक दूत का? ये किसके पास है, पुलपिट पर जो दूत है? पौलुस ने कहा, यदि स्वर्ग से एक दूत आकर और जो मैंने पहले ही प्रचार किया है, इसके अलावा कुछ और सुसमाचार तुम्हें प्रचार करे, वो शापित होने दो। इसलिए दूत पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है और वचन के साथ परमेश्वर के पास ही खड़ा होता है। ये सही है, स्वर्ग में उसका अधिकार। स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है, जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम धरती पर जो कुछ भी बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, तुम जो धरती पर खोलोगे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। ओह, यदि महान पवित्र कलीसिया केवल इन चीजों को करने की अपनी सामर्थ को जान जाए, लेकिन वहाँ बहुत अधिक संदेह है और डर और कपकपाना और सोचना था कि यदि ये होगा कैसा हो सकता है। जब तक ये बात अस्तित्व में है, कलीसिया कभी भी सीधी नहीं खड़ी हो सकती है। और जब डर की हर एक बात गायब हो जाती है और पवित्र आत्मा पूरी तरह से कलीसिया के नियंत्रण में होता है, तब सारे भय दूर हो जाते हैं और कलीसिया के पास सामर्थ होती है, समझे, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ होता है। वो उनके पीछे स्वर्ग में खड़ा होता है, वे सिंहासन के राजदूत होते हैं। बिल्कुल, मसीह के राजदूत के पास अधिकार होता है और जो कुछ भी मसीह का उसका अपना है वह उस राजदूत का होता है। और उसने कहा, तुम सारे संसार में जाओ, पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और एक गवाह क्या होता है, एक राजदूत होता है, आकर और कुछ तो गवाही को देता है। स्वर्ग की सारी सामर्थ आपके हाथों में है। ओह, हम क्यों बैठे हुए हैं और कलीसिया बांझ है और हम निष्क्रिय और सुस्त अवस्था में हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। अब वे प्राण जो कैद में थे, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो दूत के समान जीव नहीं थे, जिन्हें दूतों के रूप में नीचे लाया गया था, लेकिन यह तो उन दूत जीवों की आत्माएं थी जो जगत की उत्पत्ति से पहले गिर गई, वहाँ पहले जब स्वर्ग में युद्ध चल रहा था और शैतान और वो अजगर लड़े, और तब मतलब मिकाएल और उस अजगर ने लड़ाई की और लूसीफर, और लूसीफर को उसके सब बच्चों समेत बाहर निकाल दिया गया, वे सारे दूत जिन्हें उसने भरमाया था, और वे दूत धरती पर आए और उस समय मनुष्य होने के अधीन थे। और जब उन्होंने किया, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं और उन स्त्रियों से विवाह किया। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, भले चाहे वह पापी हो या कुछ भी हो, वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, उसे उसी तरह से बनाया है। लेकिन आदि में परमेश्वर जानता था कि कौन उसे स्वीकार करेगा और कौन उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो पहले से ठहराया हो सकता है या तो पहले से नहीं ठहराया गया है। लेकिन पूर्व ज्ञान के द्वारा वो बता सकता था कि किसे बचाया जाएगा और किसे नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सी आत्मा को लेगा। और वे आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन से आती हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होती हैं और जीवित और अरबों और अरबों और समयों के युगों तक इससे पहले जगत का आरंभ हो परमेश्वर की उपस्थिति में थी। क्या आप सोचते हैं कि वे आराधना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? और वे नीचे आकर और सीधे मनुष्य के अंदर आते हैं और वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बिल्कुल, वे परमेश्वर की आराधना करते हैं और उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है और वे हमेशा ही तेज बुद्धि और चतुर और शिक्षित रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आरंभ से ही अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए मित्र, एक कलीसिया की सदस्यता या किसी धर्म शास्त्र या किसी चीज के ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह यीशु मसीह का लहू होना है और एक नया जन्म होना है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में उसके साथ जोड़ता है। वहाँ आप हैं। परमेश्वर आदि में जब वो ये जानता था स्त्री और पुरुष को एक बनाया गया, ना ही दो पर उन्हें एक बनाया गया था। वे अलग हुए थे, एक को देह में रखा गया और एक को जैविक शरीर में रखा गया, वो ये जानता था। तो आपको ये साबित करने के लिए जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तब उसने कभी भी कुछ मिट्टी को नहीं लिया और उसे वैसे नहीं बनाया जैसे पुरुष को बनाया। उसने आदम की फसली से एक फसली को निकाला और वो एक पुरुष की उप उत्पादन बन गई, क्योंकि वह उसका भाग है। अब आपने इसे पकड़ लिया, देखा वहाँ आप हैं, वहाँ वे दूत हैं और परमेश्वर और वो आत्मा जो परमेश्वर के साथ जुड़ गई है, एक ही आत्मा है। ये सही है। अब परमेश्वर का आत्मा जो कलीसिया में वास करती है, वो आत्मा है जो स्वर्ग से आई है, जिसे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले जानता था, जिसने शैतान के झूठ को ठुकरा दिया और उस आत्मा को मांस के शरीर को लेना था ताकि उसकी परीक्षाओं को ले। उसे भी इन दूसरों की तरह देह में आना था और उन सभी को एक समान जुए पर डाल दिया। और परमेश्वर आदि से उन आत्माओं को जानता है जो होंगी और जो नहीं होंगी। वहाँ आप हैं। वह शैतान बहुत ही बुद्धिमान है कि यदि संभव हो तो वह बस चुने हुए को भी भरमा दे। और ये आत्माएं, ये दूत जो प्रचार करते थे, कैद में थे। वे दूत, यदि आप इसे यहाँ ध्यान देंगे तो यह इंग्लिश का छोटा ए जिसका मतलब मनुष्य है, वे दूत संदेश वाहक यहाँ धरती पर हैं। उन्होंने पाप किया और केवल एक ही तरीके से वे पाप कर सकते थे, वो है अविश्वास करना। और उस तरीके उनके पास उनके खुद के धर्म थे और उन्होंने नूह के संदेश पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने हनोक के संदेश पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उनके संदेश को ठुकरा दिया और दोषी ठहराए गए थे। बाइबल ने कहा कि वे ठहराए गए थे। हनोक ने उनसे भविष्यवाणी की, कहा प्रभु उसके 10,000 संतों के साथ आ रहा है, और उन्होंने भविष्यवाणी की। और नूह ने एक नाव बनाई और उन्होंने कहा वो एक पवित्र शोर शराबा करने वाला है, वो एक कट्टरपंथी है, वहाँ ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि बारिश आने वाली है। और 120 वर्ष बीत गए और उसके पास एक धर्म था जिसमें उद्धार था, वहाँ से बचने का एक मार्ग बनाया गया था, लेकिन वे लोग उनके परिस्थिति में संतुष्ट थे। आज भी ऐसा ही है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है, लेकिन वहाँ बच निकलने का एक मार्ग है और वो मार्ग यीशु मसीह के जरिए से है। आमीन। आप वहाँ है, वही जाति, वही आत्माएं, और वे पूरी तरह से धार्मिक मनुष्य थे, बहुत ही धार्मिक, लेकिन वे वाचा की प्रतिज्ञा से चूक गए। वैसा ही ये आज भी है। मनुष्य कलीसिया जाता है और बड़ी बड़ी कलीसियाओं के साथ जुड़ता है और शहर का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। यदि वे किसी कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं तो वे शहर में सबसे बड़ी कलीसिया के लिए देखते हैं, शहर में सबसे अच्छी और सम्मानित कलीसिया हो। वे बुलावट से कितना अधिक चूक गए हैं, वे इससे कितना अधिक चूक गए हैं। केवल एक ही तरह से आप कभी यीशु मसीह को जान पाएंगे, वो है आत्मिक प्रकाशन के द्वारा, ना ही धर्म ज्ञान के द्वारा। और आप बाइबल का कितना अधिक अध्ययन करते हैं, भले ही चाहे आप मसीही विज्ञान हो, मेथोडिस्ट हो, यहोवा विटनेस हो, या आप चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप इसे वचन के द्वारा कभी नहीं जान पाएंगे। यह तो परमेश्वर का आत्मा है जो इसे आप पर प्रकट करता है। यह एक आत्मिक प्रकाशन है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में, जब उन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर केन अच्छे धर्म ज्ञान के साथ आता है। उसने कहा परमेश्वर यह जानना चाहिए कि मेरे हृदय का हमारा सबसे अच्छा प्रयास है। मैं एक सुंदर वेदी को बनाऊंगा, मैं उस पर फूल रखूंगा, मैं उस पर फलों को रखूंगा, मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। निश्चित रूप से मैं इसके साथ परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ और उसे जानने दो कि मैं अपने हृदय में सच्चा हूँ। वो सही था जहाँ तक वचन गया था। परमेश्वर आराधना को चाहता था, वो आराधना के लिए गया। उसने एक सुंदर आराधना करने के स्थान को बनाया, बड़ा उत्तम गिरजाघर, जैसा कि वे इसे आज कहते हैं। और उसने इसे सही बनाया और उसने इसे सही तरह से स्थापित किया और उसमें एक वेदी को रखा। वो एक नास्तिक या अविश्वासी नहीं था, लेकिन हाबिल, परमेश्वर के वचन पर उस समय कोई बाइबल नहीं लिखी गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि यह फल नहीं था जो हमें अदन की वाटिका से बाहर लाया। यह सेब नहीं थे जिसे आदम और हवा ने खाया था। यह पूरी तरह से यौन संबंधी बातें थी जिसने उन्हें अलग किया था और उन्हें विभाजित किया था और ये जानते हुए कि वे मरणहार बन गए हैं और आदम के लहू के जरिए से और उस सर्प के लहू के जरिए से जिसने इसे आरंभ किया था, हाबिल दैविक प्रकाशन के द्वारा उसने जाकर और एक मेमना लिया और इसे चढ़ाया और परमेश्वर ने कहा यही है ये। निश्चय ही जब वे रूपांतर के पर्वत से नीचे उतरे तो यीशु ने कहा मुझ मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं तुम मूसा हो और कुछ कहते हैं कि तुम एलिया हो और कुछ कहते हैं कि तुम यर्मिया हो और कुछ कहते हैं कि तुम वो भविष्यवक्ता हो। ने कहा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा धन्य है तू शमोन बरजोना, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुम पर प्रकट नहीं किया है, देखो ना ही अब और पत्र के जरिए से ना ही अब और स्कूल के जरिए से, तूने इसे कभी किसी धर्म विद्यालय में नहीं सीखा, ना ही किसी ने तुझे बताया। यह मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह प्रकट किया है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। वहाँ आप हैं, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। बस इतना ही, उस कलीसिया पर, उस प्रकाशन पर यह कलीसिया बनाई गई है। यह एक दैविक प्रकाशन है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और आपने उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहा है और इस शरीर के सदस्यों में कार्य कर रहा है। यहाँ वो कलीसिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि ये दीन है और एक विशेष कार्य में है और आप कहीं तो देवदार के पेड़ के नीचे खड़े हैं या जो कुछ भी है, यदि ये किसी के घर में एक निजी सभा में है, चाहे ये कहीं भी हो, सुंदरता और चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। यह एक प्रकाशन के द्वारा हृदय की सच्चाई होती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आमीन। मेरे हम आपको ये कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसमें से चलते हुए क्या हमें मिलेगा, वो है जो वहाँ पर वो गया, वे दूत, संदेशवाहक, वे प्रचारक, वे बुद्धिमान, वे संदेशवाहक जिन्होंने विश्वास नहीं किया जब नूह उनके पास प्रचार करने को गया और उन्हें बताया इसलिए इस नाव में आओ। उन्होंने कहा इस पवित्र शोर शराबा करने वालों को सुनो, उस कट्टरपंथी को सुनो, क्योंकि वहाँ कोई बारिश नहीं है। किसी ने कभी ऐसी बात के बारे में सुना है, क्योंकि ओह हमारे पास कलीसिया नहीं है, क्या हम धार्मिक नहीं है, क्योंकि वे धार्मिक थे। यीशु ने कहा कि यह एक ऐसी पीढ़ी होगी जो उस समय गुजर गई, वो ही पीढ़ी होगी जो उसके आने से ठीक पहले फिर से दोहराई जाएगी। जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर भी होगा, क्योंकि वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, विवाह में दिया गया था उनके पास, तब कहीं तो रेनो निवादा शहर थे, उनके पास हर तरह की बेकार की बातें थी जो आज उनके पास है, रैली करना और खेलकूद करना और मजाक उड़ाना, ठड्डा उड़ाना और इत्यादि। भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन वास्तविक सत्य का इनकार करते हैं। वाचा अनुग्रह का संदेश परमेश्वर उसके रास्ते को बना रहा है और लोगों को उसकी वाचा को दे रहा है, वे कैसे बचकर निकल सकते हैं। उसमें उद्धार था, उद्धार एक बच निकलने का स्थान था। उद्धार के साथ हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज लोग कहते हैं क्या हम सरकार के एक अच्छे प्रजातंत्रवादी गठन के नीचे नहीं रह रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है। मैं परवाह नहीं करता कि हम कितना अधिक सरकार के प्रजातंत्रवादी के गठन से रहते हैं, हमें यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। सही है, हमें मसीह की आवश्यकता है। मैं सरकार के प्रजातंत्रवादी के गठन की सराहना करता हूँ जिसका प्राण के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वे सरकारें टल जाएंगी और हर एक देश टल जाएंगे, और मैं खड़ा हूँ जहाँ फिरौन खड़ा था और उनके सिंहासनों को खोजने के लिए आपको 20 फुट जमीन के नीचे खोदना होगा। इस धरती के सारे फिरौन और उसके राज्य और उसकी सारी डगमगाती चीजें विफल हो जाएंगी और टल जाएंगी, लेकिन यहोवा सदा के लिए राज्य करेगा क्योंकि वो अमर हार परमेश्वर है। चट्टान मसीही यीशु पर हम मजबूती से खड़े हैं क्योंकि अन्य सारी बुनियादें ढसती हुई रेत हैं। चाहे ये परवाह करें, राज्य उठेंगे और विफल हो जाएंगे, लेकिन ओह वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि चाहे यह कुछ भी, कोई भी वर्तमान नहीं है, ना ही कुछ भी भविष्य, कुछ भी नहीं, भुखमरी या संकट या कुछ भी, हमें कभी भी परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता है जो मसीह में है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है तो वो अब और समय की सृष्टि नहीं होता है, लेकिन वो अनंतता की सृष्टि है। आमीन। वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो पार हो गया है, वह समय तत्व में से होते हुए अनंतता के अंदर चला गया है। वो कभी भी नाश नहीं हो सकता और परमेश्वर ने शपथ खाई कि वह अंत के दिनों में उसे जिलाएगा। इसलिए उनके पास आपकी सारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं और आपके सारे बड़े समय हो सकते हैं, और आप जो भी चाहते हैं और अपने गंदे चुटकुले सुनाएं और अपने ताश के पत्तों के खेल को खेलें और सूप का भोज लें और बाकी की हरी चीज को करें जो आप चाहते हैं, और वहाँ कुछ शिक्षित प्रचारक खड़े होते हैं। हो सकता है कि वो इन कुछ छोटे लोगों की तुलना में जो शायद ही उनके क ख ग को जानते हो इस पर बेहतर काम कर सकता हो, लेकिन मैं आपको सच्चाई को बताता हूँ, मैं चाहूँगा कि एक लड़का जो क ख ग को भी नहीं जानता हो मुझे प्रचार करे जो मसीह को जानता हो। उसकी तुलना में वहाँ जितने भी बड़े धर्मज्ञानी हैं जो सारे धर्म ज्ञान के साथ हैं जिसे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ केंटकी में ज्यादा समय नहीं हुआ एक छोटी सी उम्र का लड़का जो मुश्किल से अपना नाम भी नहीं पढ़ सकता था कहा कि प्रभु ने उसे प्रचार करने के लिए बुलाया है, और इसके लिए वो एक विद्यालय भवन को चाहता है क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने उसके लिए इसे नहीं दिया। कोई तो विख्यात बड़ा प्रचारक अपने नाम का प्रयोग करके इस तरह से वहाँ आता है, कोई धर्म विज्ञान का विद्वान, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल को दे दिया। निसंदेह दो सप्ताह की बेदारी को रखा गया, एक प्राण भी नहीं आया, और उसके पिता ने वापस जाकर कहा अब आप उसे लेने दो, मैं एक टैक्स भरने वाला हूँ, मेरे पास मेरे लड़के के लिए अधिकार है कि वो इसे करे और मेरे लड़के को भी यह मिलना चाहिए। तब वो वापस पता लगाने गया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है हम उसे कम से कम दो रातें लेने देंगे, और वे आगे बढ़े और उसे दो रातों के लिए लेने दिया। और उस रात वो छोटा सा लड़का वहाँ पर उठा और जो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता था किसी ने उसके लिए विषय वाक्य को पढ़ा था, लेकिन जब वो मंच पर चल कर गया वो पवित्र आत्मा के साथ अभिषेकित था, और जब उसने प्रचार किया लगभग 20 लोग वेदी पर आ गए और वह स्वघोषित प्रचारक रोते हुए कलवरी की ओर जाने लगा उस वेदी पर। निश्चय ही भाई ऐसा नहीं है, आप क्या जानते हैं, यह तो ऐसा है जिसे आप जानते हैं, यही वो विचार है, यही है जो इसे लेता है, यह मसीह को जानना इसे लेता है, उसे जानना ही जीवन है, उसे अस्वीकार करना मृत्यु है। हमारे अन्य प्रश्नों की ओर जल्दी से जाएंगे। अब जो प्रश्न जॉर्जिया को जाता है, पत्थर किसे, प्रकाशित वाक्य 21, 19 और 20 में पत्थर किसे प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप अपनी बाइबल खोलने के लिए समय निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पास अभी अधिक समय नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। प्रकाशित वाक्य 20, मैं सोचता हूं कि यह 21, 19 और 20 है। जी हाँ, तो ठीक है, वहाँ आप देखेंगे कि वो उन पत्थरों की बात कर रहा था जो भवन में थे, और वे पत्थर बुनियाद थे। यदि आप ध्यान देंगे, मैं सोचता हूँ कि आपने इसे लिया है भाई नविल, और हर एक पत्थर एक बुनियाद था, ना ही एक पत्थर बुनियाद और दूसरे, लेकिन हर एक पत्थर एक बुनियाद था। हाँ, एक पत्थर एक नित्य बुनियाद था, और वहाँ पर 12 पत्थर थे, और यदि आप उन 12 पत्थरों की ओर ध्यान देंगे, हर एक को ले, सबसे पहले यशब और मानिक के साथ आरंभ होता है और इसी तरह से आगे हर एक पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल में आप वहाँ पाएंगे कि इसे विशेष पत्थर कहा जाता था, उनमें से कुछ में थोड़ा अंतर था, आपने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। यदि आप शब्दकोश में वापस जाकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह वही पत्थर है, बस कुछ अलग नाम है, बदला हुआ। लेकिन इसका आरंभ यशब के साथ होता है, यशब बियामिन का पत्थर था, मेरा मतलब वो पत्थर, ओह, पहला पुत्र रुबेन था, पहला पत्थर रुबेन था जो यशब था, अंतिम पत्थर बियामिन था जो सबसे ऊपर अंतिम पत्थर था। अब ये 12 पत्थर जिनकी बुनियाद डाली गई थी, वे 12 पत्थर हारून की छाती के पटुके पर लटके हुए थे, और इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वो इन गोत्रों का महायाजक था, उनका हर एक जन्म का पत्थर यहाँ इस पटुके में था, और जब लोगों ने इस पटुके को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि हारून उस पूरे गोत्र का महायाजक था जब उन्होंने इस पटुके में जन्म के पत्थर को देखा। अब जब आज सुबह हमने भाई नेविल का संदेश सुना, और बहुत सी बार उन्होंने उरीम तुम्मीम को लाया। आप देखते हैं बाइबल में इसका उल्लेख किया गया, जिस तरह से वे जानते थे कि उनका संदेश सच था या नहीं। वे पत्थर जब वे ये बताने जाते कि उस मनुष्य ने क्या कहा, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को करता और वे सारे पत्थर एक साथ चमकने लगते। ये प्रकाश का एक समूह बनाते जिससे यह नीलम को और यशब और मानिक और उन सारे पत्थरों को लेते जो उनके प्रकाश को चमकाते हैं। वे एक बहुत बड़े सुंदर मेघधनुष के रंग को बनाते जो सारी चीज को एक साथ मिश्रित कर देते। अब आज जबकि उस उरीम तुम्मीम को उस याजक गण से उठा लिया गया था, अब यह बाइबल आज परमेश्वर का उरीम तुम्मीम है। और जब एक प्रचारक प्रचार करता है, यह अवश्य ही यहाँ केवल एक छोटा सा स्थान नहीं होना है, और यही है अपनी आशा को उस पर रखता है। यह अवश्य ही संपूर्ण बाइबल होना चाहिए जो उस संदेश को दर्शाता हो जो मनुष्य प्रचार कर रहा है। यही वो बात है, ना ही बस एक स्थान से, और कहें तो ठीक है बाइबल ऐसा कहती है। ओह, निश्चय ही यह बहुत कुछ बातों को कहती है, लेकिन आपको अवश्य ही इस सब को एक साथ रखना होगा। और जब परमेश्वर की आत्मा आती है और उस वचन में जाती है, ये सभी को एक साथ स्थान पर रखता है और एक महान बड़े प्रकाश को चमकाती है, और वो प्रकाश यीशु मसीह है। आमीन। अब ये 12 पत्थर थे जो 12 बुनियाद थे, जो रूबेन से आरंभ हुए थे और गाद और आगे बियामिन तक, 12 गोत्र, 12 पत्थर। और वे पत्थर जो मंदिर में है नए स्वर्गीय यरूशलेम में हर एक बुनियाद कुलपतियों में से एक पर रखे जाएंगे। अब देखो, आप पत्थरों पर ध्यान देना। अब आप उन कुलपतियों को देखेंगे जो ठीक किसी और ही चीज के अंदर चमके हैं। अब एक अन्य प्रश्न में चौथे की व्याख्या करें, प्रकाशित वाक्य 5 के 4 पशु की। भाई नेविल, यदि आपने ठीक वहाँ बारीकी से लिया है, या आप में से कुछ, प्रकाशित वाक्य 5 में हम इसे केवल एक मिनट के लिए पढ़ेंगे। यह एक यहाँ की एक सुंदर तस्वीर है, यहाँ मेरे पास या मेरे खुद के लिए है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में देखा एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और मैं, अब यह वो जगह नहीं है, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। 4 पशु, आइए देखें 14वां पद। तो ठीक है महाशय, अब हम जाएंगे, ये सही है। आइए अब यहाँ पर 12वें पद से आरंभ करते हैं। नहीं, मुझे लगता है और 4 पशुओं ने कहा आमीन। नहीं, इसके पीछे एक छोटे से स्थान पर है। भाई नेविल, देखो मैंने आवाज सुनी। आइए देखते हैं, बस एक मिनट, मैं इसे कुछ देर पहले पढ़ रहा था। ओह, हम यहाँ हैं। आइए 6वें पद से आरंभ करें, 5वां पद। और इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिर और 7 आंखें थी, जो कि 7 आत्माएं हैं जिसे भेजा गया, पृथ्वी पर भेजा गया। मैं चाहता हूं कि आप उस प्रश्न को पकड़े रहें, और यदि मैं इसे यहां एक मिनट में नहीं समझता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप फिर से वापस लाएं, मैं उस पर हल करना चाहता हूं। 7 आंखों की 7 आत्माएं जो मेमने पर थीं। ओह, यह एक बहुत ही सुंदर चीज है। ठीक है, हम अब इस भाई के प्रश्न को लेना चाहते हैं, तो ठीक है, अब इसे मत भूलना। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। और जब उसने इस पुस्तक को ले लिया, तो वे 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के पास में वीणा थी। अब यही है वो चार पशु यहाँ पर, यदि आप देखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे यह नया गीत गाने लगे, तू योग्य है, और आगे बढ़कर उनकी सारी आराधना प्रभु को दी। अब प्रकाशित वाक्य के ये 4 पशु, यदि आप उन पर ध्यान दें, तो हर जगह आप बाइबल के पढ़ने वाले और जो लोग इस टेप रिकॉर्डिंग को सुनने जा रहे हैं, वे 4 पशु, उनके 4 मुख थे। एक का मुख मनुष्य जैसा था, दूसरे का मुख बैल के जैसा, और दूसरे का मुख उकाब के जैसा था, और दूसरे का मुख सिंह के जैसा था, और वे कभी भी पीछे की ओर नहीं हटे, वे पीछे की ओर नहीं हट सकते। कितने लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुरानी किताब याद है जब उन्होंने इसे वर्षों पहले सिखाया था। जब मैंने यहाँ प्रकाशित वाक्य की किताब पर लगभग 2 वर्ष लिए थे, बहुत से पुराने समय के लोगों को याद होगा। देखो, वे पीछे नहीं जा सकते थे क्योंकि वे जहाँ कहीं से जाते थे वे आगे की ओर जाते थे। यदि वे इस तरफ से जाते तो मनुष्य की नाई जाते थे, यदि वे इस ओर जाते तो सिंह की नाई जाते। इस ओर गए वे उकाब की नाई जा रहे थे, यदि वे इस ओर जाते तो वे बैल की नाई जाते थे। देखिए, वे पीछे की ओर नहीं जा सकते थे, वे हर समय आगे बढ़ रहे थे। अब ये 4 पशु, अब इसे जल्दी से ले लेंगे क्योंकि मैं इस पर बहुत अधिक समय तक बने नहीं रहना चाहता। लेकिन 4 पशु, वो पशु बाइबल में सामर्थ को प्रतिनिधित्व करता है। और आप ध्यान दें कि ये पशु कहीं उस ओर झील में या कहीं तो समुद्र में से ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन वे परमेश्वर के सिंहासन पर थे और वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वे 4 पशु का अर्थ 4 सामर्थ हैं जो पृथ्वी में से ऊपर आती है, और वे 4 सामर्थ 4 सुसमाचार थे, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है। और उनमें से एक वो जब सुसमाचार एक सिंह की नाई आगे बढ़ता है, यह कठोर है, यह साहसी है। सुसमाचार एक सिंह के जैसे शूरवीर है और यह एक सिंह के जैसे एक राजा है। यदि यह मनुष्य का मुख आगे की ओर बढ़ता है तो यह एक मनुष्य की तरह चालाक और चतुर है। यदि यह उकाब जाता है तो ये तेज पंख और ऊंची ऊंचाइयां होती हैं। यह समझे मेरा क्या मतलब है? यदि वो बैल की तरह जाता है तो यह घोड़े का काम होता है जो खींच सकता है। वो बैल का काम जो खींचता है उस सुसमाचार के बोझ को। 4 पशु 4 सामर्थी जो थे मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, 4 सुसमाचार जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में जोर की आवाज को किया, जो था, यदि आपने ध्यान दिया, उनकी सामने और पीछे आंखें थी, वे जहां भी गए इसने प्रतिबिंबित किया। उन्होंने हर जगह देखा वे जा रहे थे। और यह सुसमाचारों की सामर्थ है, जैसे जैसे यह बाहर जाता है, यह इसमें एक मनुष्य की चतुराई है, इसमें एक उकाब की तेज गति है, इसमें वो सामर्थ है, खींचने की सामर्थ, बैल की तरह बोझ उठाने वाला, इसमें वो सिंह की शक्ति और साहस है। देखो, यह 4 सुसमाचार है जो प्रकाशित वाक्य की 4 सामर्थ है, 4th अध्याय। तो ठीक है, अब अगला, वे 24 प्राचीन कौन हैं? तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह वहाँ पर होगा, वो 24 प्राचीन कौन है। अब यह बहुत साधारण है, हम इसे ले सकते हैं। 24 प्राचीन सिंहासन के सामने बैठे हुए थे। इसमें मैं सोचता हूँ कि यह पद 4 में है जहाँ यह पाया जाता है। और वहाँ एक और चला गया, मुझे लेना होगा। आइए देखें, मैंने 4:10। तो ठीक है, प्रकाशित वाक्य 4th अध्याय और 10वां पद, यह सही है, हम इसे ले लेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है आराधना करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अब 24 प्राचीन, एक प्राचीन एक सर्वेक्षक होता है। अब ध्यान दें, वे 12 धर्मपिता और 12 प्रेरित थे और वे खड़े हुए थे, 12 एक ओर और 12 दूसरी ओर। वे 24 प्राचीन थे जो एक ओर के 12 धर्मपिता थे, पुराना नियम, दूसरी ओर नए नियम के 12 प्रेरित थे। क्या यीशु ने नहीं कहा, तू इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर बैठेगा? अब बुनियाद देखो, वहाँ पर एक पेड़ भी है और दोनों ओर के पेड़ पर 12 तरह के फल लगते हैं और वे महीने में एक बार उनके फल को देते हैं, जो कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। वे हर वर्ष 12 प्रकार के फल देते हैं, जैसे 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 ये समय आगे जाता है, 12 आराधना के संख्या में आप देखो। और वहाँ एक 24 है, 24 जो 12 प्रेरित और 12 धर्मपिता होंगे, वे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अब 4th पद या 4th प्रश्न, उत्पत्ति 38 में लाल रंग का धागा या सूत क्या दर्शाता है? लाल रंग का धागा या सूत, यदि आप देखेंगे तो वो यहूदा था और उसके पुत्र हुए थे, और उसके एक पुत्र ने एक कनानी स्त्री से विवाह किया और इस कनानी स्त्री की कोई संतान न हुई और यहूदा का पुत्र मर गया। फिर नियम को लेना था, अगले पुत्र को भाई की पत्नी को विवाह करना था, और मरे हुए के लिए वंश को खड़ा करना था और दूसरे पुरुष ने सहयोग नहीं किया और जैसा उसे करना चाहिए और प्रभु ने उसे घात किया। तब उसका एक छोटा पुत्र था, तो यहूदा ने कहा, रुकना, जब तक ये पुत्र नहीं बढ़ता, बड़ा नहीं हो जाता, उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता है जब तुम उससे विवाह कर सकती हो। और जब वो इस स्थान पर बड़ा हुआ कि उसे अपने दो भाइयों की पूर्व पत्नी से विवाह करना था, तो ठीक है, तब उसे उनकी पत्नी से विवाह करना था ताकि अपने भाइयों के लिए वंश को बढ़ाए जो उससे पहले मर गए थे। यहूदा ने उस स्त्री, कनानी स्त्री को पुत्र नहीं दिया, उस लड़के को, और बस उसे आगे जाने दिया। सो उसने देखा कि वह कुछ गलत कर रही है, तो वह बाहर जाकर अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल देती है और एक सार्वजनिक स्थान पर बैठ जाती है जैसे एक वेश्या बैठती है। यहूदा वहाँ से गुजरता है और उस स्त्री को उसकी पत्नी के जैसे लिया और वह एक वेश्या थी और उसके साथ रही और कहा, स्त्री ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ क्या समझौता करोगे? और वह उसने कहा मैं उसे एक बालक देता हूँ। उसने कहा, तो ठीक है, मुझे एक चिन्ह दो कि तुम ऐसा करोगी। सो स्त्री ने उसकी लाठी और उसकी अंगूठी और आदि को लेकर और इसे रख लिया। और जब वे बालक को ले आए तो वे वेश्या को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वह वेश्या नहीं थी। कुछ समय बाद उसने दिखाया था कि वो एक माँ बनने वाली थी और जब उसने दिखाया कि वो माँ बनने जा रही थी, उन्होंने आकर यहूदा से कहा, तेरी बहू ने वेश्या का किरदार निभाया है, कहा क्योंकि वो माँ बनेगी और तुम्हारे दोनों लड़के मर चुके हैं। उसने कहा, तो ठीक है, उसे सामने बुलाया जाएगा और उसे जला दिया जाएगा। तब उस स्त्री ने यहूदा के पास कहला भेजा और कहा, जिस व्यक्ति ने इसे किया, इस लाठी और अंगूठी का मालिक है तो ठीक है, या उसका ससुर था। और उसने कहा, वो स्त्री मुझसे भी अधिक धर्मी है। अब जब वो जानती थी कि उसके बालक जन्म लेने वाले थे तो वे जुड़वा बालक थे, और जब जुड़वा पहला बालक जिसका जन्म होना था, पुराना यहूदी रिवाज, पहले बालक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है जो पहला बालक का जन्म लेता है, और यह याद रखना, उसका पहला बालक था, बाकी के लड़कों में से किसी का भी उससे कोई बालक नहीं था, उसे अब तक कभी कोई बालक नहीं हुआ था। और जब उसका पहला बालक जन्मा तो ये बस एक हाथ था, और दाई ने उसके चारों ओर लाल रंग की डोरी डाली क्योंकि लाल रंग की डोरी छुटकारे को बताती थी। जो कुंवारी मरियम का पहला पुत्र होगा उसके पास छुटकारे की लाल रंग की डोरी है। और जब उसने अपना हाथ पीछे की ओर खींचा तो दूसरा एक पहले आया, और जब उसने किया, कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरे एक के पास जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यही उत्पत्ति 38 का अर्थ है। आप देखिए कि वो पहला बालक अभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बना रहता है। वो पहला छुटकारे के नियम के नीचे था। आप जानते हैं, मैंने कहा छोटा खच्चर, आप जानते हैं, मैंने उसके बारे में बताया है कि उसकी आँखें और ये जो कुछ भी है, उसके कान टूटे हुए, लेकिन यदि वह जन्म सिद्ध अधिकार के साथ उत्पन्न हुआ तो उसके स्थान पर एक निर्दोष सिद्ध मेमना मारा गया, वहाँ है ये। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार के लिए था। पहला बालक जो माँ से आया और उन्होंने उस हाथ को देखा और जानते थे कि यह फिर से वापस घूम सकता है, और जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया दिखाने के लिए कि उसके पास ये है, तो वो पहला था। दाई ने उसके चारों ओर लाल रंग का धागा बांधा और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, समझे? लेकिन पूरी तरह से वो पहला था, वो लाल रंग की डोरी थी। लाल रंग की डोरी वहाँ हर जगह बाइबल में होते हुए इसका अर्थ होता है छुटकारा, जो आगे आने वाले पहले बालक की ओर इशारा कर रहा था। पहले जो घोड़ा जन्मा, पहली जो गाय जन्मी, ये जो कुछ भी था, हर एक चीज जो पहले जन्मी थी, जो उत्पन्न हुई, छुटकारे के नीचे था, उसे छुड़ाया जाना था, हर एक चीज को छुड़ाना था। हालेलुया! ओह, यह बस मुझे उत्तेजित करता है। आपने इसे समझ लिया? पहले को छुड़ाया जाना था, यह एक नियम था। प्रभु का नाम धन्य हो। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने सारे संसार को छुड़ा लिया। निश्चित रूप से उसने छुड़ाया। वो हर उस सृष्टि का छुड़ाने वाला था जिसकी कभी धरती पर सृष्टि की गई थी। वो छुड़ाने वाला था और सारा छुटकारा उसी में निहित है, और बिल्कुल ही कोई और जरिया नहीं। आप कभी अच्छे कामों के द्वारा नहीं आ सकते, ना ही कलीसिया से जुड़ने के द्वारा, या जो कुछ भी है, आपको अवश्य ही उस लाल रंग की डोरी के द्वारा आना होगा। वो छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। तो ठीक है, अब अगला है, दान कहाँ है, वे भेंटें क्या है जो प्रकाशित वाक्य 11 के दो गवाहों की मृत्यु के संबंध में भेजे जाने हैं। ओ भाई पाल्मर, क्या आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते? अब छुटकारा, यहाँ ये डोरियाँ, यह लाल रंग की डोर, हम देखते हैं कि इसका मतलब छुटकारे से है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य 11 में वे भेंटें क्या है? एक समय आ रहा है, अब यहाँ हम एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, जिसका उत्तर एक रात को दिया गया था कि मेरे एक प्रचारक मित्र ने यहूदियों के बारे में लिखा, यह किस तरह से होगा। अब इन यहूदियों को उनसे 3.5 साल की प्रतिज्ञा की गई है, यह कितने लोग जानते हैं? 70 सप्ताह की प्रतिज्ञा की गई थी, कहा मसीह आएगा और बीच में ही काट दिया जाएगा। 3.5 वर्ष मसीह ने प्रचार किया, ठीक 3.5 वर्ष में मारा गया, 3 वर्ष और 6 महीने उसने प्रचार किया। और फिर अशुद्ध या घृणित वस्तु उजाड़ लाता है, उस उम्र के मुसलमान को पवित्र भूमि पर रखा गया था, जैसा कि परमेश्वर ने 2500 वर्ष इसके होने से पहले कहा, वो वहाँ पर खड़ा होगा। नबी ने इसे देखा और इसे देखकर और कहा, वे करेंगे जब तक अन्य जातियों का कब्जा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक अन्य जातियों का समय काल समाप्त नहीं हो जाता। अब वहाँ अब भी 3.5 वर्ष की प्रतिज्ञा बाकी है। यदि आप ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 11 के ये गवाह भविष्यवाणी 1260 दिन बिल्कुल ठीक 3.5 वर्ष होते हैं अभी, और वे टाट ओढ़े हुए थे। अब उनकी सेवकाई को देखना, वे क्या हैं? अब इन दोनों गवाहों को मार दिया जाता है। अब अन्य जातियों की कलीसिया के रैप्चर के बाद वे यहूदियों के पास लौट आए। अन्य जाति कलीसिया विवाह भोज के लिए घर चली जाती है, और जब रिबिका को इजाक के साथ अब्राहम के स्थान में ले जाया गया और वहाँ विवाह हो गया, और रिबिका और इजाक जो कुछ अब्राहम का था वे उसके पूरी अधिकारी होकर बाहर निकले, और ये सब कुछ इजाक को मिला बिल्कुल, और वो इजाक को तब तक न मिल सका जब तक इजाक का पहले विवाह न हो गया। ओ हालेलुया, वहाँ आप हैं, और मसीह बन जाता है। परमेश्वर उस सिद्ध बिगड़े हुए शरीर में पूरी तरह से हमेशा के लिए और अनंतता के लिए वास करता है। जब मेमने और दुल्हन का स्वर्ग में विवाह होता है तो वह पूर्ण अधिकार में बाहर आती है बिल्कुल। इजाक और रिबिका पूर्ण अधिकार में बाहर आए, और जबकि दुल्हन का यह समारोह स्वर्ग में चल रहा होता है, अन्य जाति दुल्हन का राजकुमार परमेश्वर के पुत्र के साथ विवाह हो रहा है। जब उनका विवाह हो रहा होता है तो वहाँ 3.5 वर्ष जगह लेते हैं मूसा और एलिया, जो मूसा कभी भी अनुपस्थित नहीं था, नहीं उसका शरीर उठा लिया गया था, दूतों ने उसे उठा लिया, वो बिगड़ा नहीं, वो सड़ा नहीं, वो मसीह का एक सिद्ध नमूना था। वह मर गया और दूत उसे उठा कर ले गए, और यहाँ तक शैतान ये भी नहीं जानता कि उसे कहाँ दफनाया गया था, और मिकाएल प्रधान दूत के साथ उसके दफनाने के बारे में विवाद करने की कोशिश की, यही है जो बाइबल ने कहा, परमेश्वर ने उसे रैप्चर में उठा लिया। और एलिया, जब वो वहाँ चल रहा था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता यरदन के पास चला गया और उसका वस्त्र उतार कर और जल पर दे मारा, और वो दाईं और बाईं ओर अलग हो गया, वो पहाड़ पर चढ़ गया। एलिशा ने कहा तुम मेरा पीछा किस लिए कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम्हारा आत्मा का दूना भाग चाहिए। कहा, तूने एक कठिन बात को मांगा है, लेकिन यदि तुम मुझे जाते हुए देखते हो। उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं। और कुछ समय के बाद अग्नि रथ और आग के दूत, अग्नि के घोड़े स्वर्ग से नीचे आते हैं, और एलिया उस पर चढ़ गया और ऊपर महिमा के अंदर चला गया। उसने कभी भी मृत्यु को नहीं चखा, उसका रूपांतरण किया गया, उसे मरना है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य 11 के इन दो भविष्यवक्ताओं को देखोगे, वे वही काम करते हैं जो मूसा और एलिया ने किया था। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या आपका मुझे बताने का मतलब ये है कि एलिया और मूसा अभी भी जीवित हैं? बिल्कुल। क्यों? रूपांतरण के पर्वत से पहले, रूपांतरण के पर्वत पर यीशु के कलवरी जाने से पहले, वहाँ मूसा और एलिया दोनों खड़े थे और उसे बातें कर रहे थे। निश्चित रूप से वे खड़े थे, वे मरे नहीं हैं, और वे कभी भी नहीं मरे थे। वे मरणहार हैं, उन्हें मरना है, सो वे महिमा में अवस्था में हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर जब वे वापस आते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अभिषेक के नीचे ठीक 3.5 वर्ष प्रचार करते हैं, जबकि अन्य जातियों से आशीषों को उठा लिया जाता है और कलीसिया ऊपर उठा ली जाती है और ठंडी औपचारिक कलीसिया का शिकार कुत्तों की तरह किया जाता है साम्यवाद और रोमन दल के द्वारा। और जब उनका शिकार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, वे तब मारे जाते हैं। ये भविष्यवक्ता 3.5 वर्ष प्रचार करते हैं और बाइबल ने कहा कि वे मारे जाते हैं उस बड़े रास्ते में आत्मिक रूप से बुलाए गए सदोम और मिस्र, जहां हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह पीछे यरूशलम में है, देखो पीछे यरूशलम में आत्मिक रूप से बुलाए गए। और वे 3 दिन और रात तक रास्ते पर पड़े रहे और फिर 3.5 दिनों के अंत में जीवन की आत्मा उनमें आती है और वे उठ खड़े होते हैं। उन्हें भी अन्य मरणहार लोगों की तरह मरना था, उन्हें ऐसा करना ही था। और जब उन्होंने इन दो प्रचारकों को मार डाला, उन्होंने गलत के विरुद्ध प्रचार किया और वे आकाश में से आग को लेकर आए। ऐसा किसने किया? देखा, वे स्वर्ग से विपत्तियों को लेकर आए और धरती को उतनी ही तेजी से प्रहार और किसी भी समय जब वे चाहते थे। और वे आकाश में से आग को लेकर आए और जब तक उन्होंने चाहा तब तक उन्होंने आकाश को बरसने से रोके रखा। यह कौन था? बिल्कुल मूसा और एलिया, और वहाँ पर वे दो गवाह हैं। और जब उन्होंने अपने प्रचार के द्वारा कलीसिया या संसार को उत्पीड़ित किया और यहूदियों को वापस स्वीकार करते हुए और उन्हें पश्चाताप के लिए वापस लाते हुए उन्हें वापस लाते हैं ताकि विश्वास करें, जब वे यीशु को दुल्हन के लिए आते हुए देखते हैं, वे कहेंगे, देखो यह हमारा परमेश्वर है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो वहाँ है। लेकिन वो उनके लिए नहीं आ रहा है, वो अपनी दुल्हन के लिए आता है। और उसकी दुल्हन, जब यूसुफ मिस्र में गया तब वो अपने भाइयों को अपने संग नहीं ले गया, लेकिन वो वहाँ उसकी दुल्हन को ले गया। बिल्कुल, लेकिन जब उसने अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट किया तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। यह बिल्कुल सही है। और जब वो इन यहूदियों पर अपने आप को प्रकट करता है तो वे वहाँ यहूदियों को छोड़ और कोई नहीं होंगे। वहाँ वे लोग हैं जिन्होंने यूसुफ को मार डाला। वो वहाँ खड़ा हुआ है और उसने कहा, तो ठीक है, मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई। और वो रो पड़ा और उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमने उसे मार डाला। वही बात अब उसके आने से ठीक पहले उन यहूदियों पर संकट का वो बड़ा समय आएगा। सतावट के कारण उन्हें वापस जन्मभूमि में लौटना पड़ रहा है। यह उन्हें भेड़ों के झुंड की तरह वापस कार्मेल पर्वत पर वापस ले जाता है। जब प्रभु यीशु अपनी दुल्हन के लिए आएगा और वे उसे देखेंगे, वे कहेंगे, यही है वो जिसकी हमने प्रतीक्षा की है, वहाँ है वो। वो अपने पंखों में चंगाई के साथ ऊपर उठेगा। ये सही है। और कलीसिया, जो यहूदी बचे हुए हैं, जब वे अंत में इन दोनों भविष्यवक्ताओं को मार डालेंगे और वे सदोम और मिस्र नाम के उस आत्मिक रूप से कहलाने वाली गली में पड़े हैं जहाँ हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था, वे एक दूसरे को भेंट भेजते हैं, दुनिया करती है। अब भाई पाल्मर, यहाँ आप हैं, रोमन इतिहास के अंदर वापस देखें और आप देखेंगे कि पूरे संसार में केवल एक ही राष्ट्र है जिसने कभी युद्ध के बाद भेंटे भेजी, यह रोमन साम्राज्य है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि मसीह विरोधी रोम से बाहर आता है, वो पशु रोम से बाहर आता है, ये मॉस्को से बाहर नहीं आ सकता है, यह रोम से आता है। वो लाल अजगर जो जन्म लेते ही उसके बालक को खा जाने के लिए महिला पर खड़ा हो गया, वो शैतान कहाँ था? यह कौन था? केसर अगस्तुस ने भेजा और 2 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों को मार डाला। लाल अजगर, अजगर पशु का अर्थ है शक्ति। रोमन शक्ति ने सताया और उस मसीह बालक को ढूंढने की कोशिश की। और ये वही बात है, हर बार जब रोमन, पहले के पागान रोमन लोगों की बड़ी जीत हुआ करती थी, वे एक दूसरे को सफेद पत्थर और हर चीज को एक दूसरे को भेंट के रूप में भेजते थे, यादगार के रूप में। तो वे जो पत्थर, जो यह क्या था? रोमन कलीसिया के बीच भेजे गई छोटी छोटी भेंट थी। बिल्कुल, वास्तव में यह होना ही है। मैं ठीक वहाँ वेटिकन शहर में खड़ा हुआ और बाइबल के साथ इसकी पुष्टि की। पोप तिगुना ताज पहने हुए विकारियस फिलीदेई, ये सारी बातें जो मैंने सुनी है और इत्यादि, यह बिल्कुल सत्य है। एक धार्मिक झुंड जो आकाश के नीचे हर एक राष्ट्र पर शासन करता है और ये करता है, वहाँ है, ये ऐसा ही है। कैथोलिक लोगों के विरोध में कुछ भी नहीं, नहीं महाशय, वे बाकी औरों के जैसे ही अच्छे हैं, लेकिन उनका धर्म इस बाइबल के अनुसार गलत है। यदि यह बाइबल सही है तो वे गलत हैं। वे कहते हैं कि वे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है। यह तो ऐसा है कि कलीसिया क्या कहती है। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल सर्वोच्च अधिकार के साथ बोलती है। बिल्कुल, यह परमेश्वर का वचन है। तो तुम वहाँ देखो, ये पत्थर जो उस समय भेजे गए थे, यहाँ प्रकाशित वाक्य के, ये वे पत्थर हैं जो एक दूसरे को भेजे गए भेंट या उपहार थे, जो केवल दिखाता है। बाइबल ने कहा, यहाँ प्रकाशित वाक्य में कहा, जिसके पास बुद्धि हो वह पशु की गिनती को गिन ले, जिसके पास बुद्धि है वह ऐसा और ऐसा करे, जिसके पास किसी दान की आत्मा है वो ऐसा और ऐसा करे। आप देखते हैं कि कलीसिया कितनी कमजोर है। एक नौजवान पुरुष ने आज सुबह मुझसे आत्मिक दानों के बारे में, अन्य जुबानों में बात करने के बारे में पूछा। एक नौजवान व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार, मैं सोचता हूँ कि उसे इन दिनों में से एक दिन सेवक बनना है, और कलीसिया के बारे में पूछा। मैंने कहा, इसमें बहुत कुछ है, यह शारीरिक है, हम उसे नहीं चाहते, लेकिन हम वास्तविक चीज को चाहते हैं, हम इसे पाने की लालसा रखते हैं। आप इसकी कलीसिया में शिक्षा देने के लिए नहीं जा सकते। पहली बात जो आप जानते हैं, आपको मिलता है किसी के पास अन्य जुबान मिलता है, किसी के पास स्तुति गान है, तब आपको उस बात के लिए कोशिश करना होगा। लेकिन जब परमेश्वर एक दान को स्वतंत्र रूप से देता है, तो यह अपने आप को प्रकट करेगा। ये सही बात है। देखो, यह परमेश्वर की भेंट है, यही है जो वो कलीसिया को जय पाने के लिए भेजता है। अब मसीह विरोधी के पास बुरा और भला जैसा कुछ तो होता है, इसके पास इसे करने का वो करने का बिगड़ा हुआ तरीका है, और यही रोमन साम्राज्य है जो एक दूसरे को भेंट या उपहार भेजता है, स्वाभाविक उपहार। परमेश्वर जय पाने वालों के लिए आत्मिक भेंट या उपहार को भेजता है, रोमन एक दूसरे को स्वाभाविक भेंट या उपहार भेजते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक आत्मा है, हम इसे ऊपर से एक बपतिस्मा के द्वारा पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है एक पवित्र सूखी पापड़ी जो कि मसीह की देह है, कि जब आप यह रोटी और कोशेर को लेते हैं तो ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पवित्र सूखी पापड़ी है, समझे। हम सोचते हैं कि यह रोटी का एक टुकड़ा है, हम विश्वास नहीं करते कि यह मसीह की देह है। हम इसे कुछ ही मिनटों में लेने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह नहीं। यही है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शिक्षा के बीच अंतर है, समझे। कैथोलिक कलीसिया कहती है वो देह, वो रोटी वास्तविक देह है, कलीसिया के पास इसे बदलने की सामर्थ है। क्या आपने कभी किसी कैथोलिक व्यक्ति को कलीसिया के बाहर से गुजरते हुए देखा है, सिर को नीचे झुकाता है, क्रूस को बनाता है, और क्योंकि उस छोटे से भवन के नीचे कलीसिया में वह छोटा सा प्रकाश जलता है, इसमें छोटा सा प्रकाश होता है, और वो कोशेर रोटी वहीं रखी रहती है, और यही मसीह की देह है। और जब आप इसे लेते हैं तो आप पूरी तरह से मसीह के वास्तविक देह को ले रहे होते हैं, आपके पहले प्रभु भोज पर और आपके पाप अंगीकार करने और आदि पर आप वास्तविक मसीह की देह को ले रहे हैं। हम कहते हैं कि मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यह दुनिया में और कुछ नहीं बल्कि रोटी का एक टुकड़ा ही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता यदि यह रोटी भी नहीं थी, यदि यह कुछ और था, तो इसे बस उसी का प्रतिनिधित्व करना था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। चाहे वे जैसे ये लोग जो कहते हैं मुझे तालाब में बपतिस्मा नहीं दिया जाए, मैं नदी में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक आप बपतिस्मा को लेते हैं, अगर यह एक तालाब में है। और क्यों फिलिपुस को एक तालाब में बपतिस्मा दिया गया था जब खोजे ने बपतिस्मा लिया, जब फिलिपुस ने खोजे को तालाब में बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा ने उसे इतना रैप्चर किया कि उसने फिलिपुस को दूर तक उठा ले गया, वह 200 मील तक दिखाई नहीं दिया, उसे आत्मा में उठा लिया, उसे सीधे स्वर्ग से 200 मील दूर तक के लिए एक रथ दिया। आमीन, अद्भुत। अब 1000 वर्ष के राज्य के बाद संत कहाँ होंगे और उनका शरीर किस प्रकार का होगा, मैं कुछ ही क्षण में उस पर वापस आऊंगा। वे यीशु के साथ होंगे, तो ठीक है। तो सातवां प्रश्न, हम दूतों का न्याय कैसे करेंगे? यह पाया जाता है, हम दूतों का न्याय कैसे करेंगे? परमेश्वर के पुत्र और कन्या बनकर, दूत सेवक हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। और बाइबल ने कहा कि हम दूतों का न्याय करेंगे, यह सही है। अब यदि आप आठवां प्रश्न, बाल ही क्यों? पहले कुरिन्थियों के दूतों के कारण। अब कोई तो मेरे लिए पहले कुरिन्थियों को निकाले, उसका 11वां अध्याय और हम वहाँ देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि वो पहला कुरिन्थियों में उसके 11वें में हम पाते हैं कि पौलुस बोल रहा है। मैं इस पर एक मिनट में जाऊंगा और फिर हम इसे जल्दी से पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे, हम इसे आगे ले लेंगे। मेरे पास यहाँ इस दूसरे पद पर कहने के लिए कुछ तो है कि मैं आशा करता हूँ कि प्रभु हमें वो दे देगा जिस तरह से हमें इसे लेना चाहिए। यदि किसी को मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि यह 11वां अध्याय है। हाँ तो ठीक है, अब ध्यान से सुने, अब बहुत ही ध्यान से सुने जिससे कि आप समझ सकें। अब अपना सारा विवेक लें और इसे अपने एक तरफ रख लें जब तक मैं इसे पढ़ नहीं लेता। उसके बाद आप देखना इस पर टिप्पणी करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना, यहोवा यो कहता है, तुम मेरा अनुकरण करो जैसे कि मैं भी मसीह का करता हूँ। पौलुस ने कहा, तुम मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। अब भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखा कि यह किस तरह से है, परमेश्वर, मसीह, पुरुष, स्त्री। अब जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो मसीह का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघारे सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है। अब हम बस एक मिनट में ले लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि स्त्री के बाल ही उसकी ओढ़नी है, उसके लिए यहाँ तक क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। इसका मतलब है कि यदि वह अपने बाल काटने जा रही है तो उसे मुंडवा दे, क्योंकि यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। कटा ले का अर्थ मुंडवा ले। देखो, लेकिन यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अब हम सीधे उस प्रश्न पर आते हैं जो आप यहाँ पूछ रहे हैं, समझे? तो ठीक है, अब बाइबल के अनुसार यह एक गलत बात है कि एक स्त्री अपने बाल को कटवाती है। अब आप यहाँ ठीक से सुनना और देखना कि क्या बाइबल किसी पुरुष को वैध अधिकार नहीं देती है कि अपनी पत्नी को दूर करे यदि वह अपने बाल को काटती है? देखो क्या यह सही है या नहीं। यदि एक पुरुष, हाँ पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, अर्थात जो लंबे बाल है, क्योंकि जैसे वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? अब मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह अच्छी तरह से अंदर चला जाए। देखो, और अब याद रखना, मैंने दसों हजारों प्यारी महिलाओं को देखा है, वे ठीक अभी जान लें, और उनमें से बहुत सी इस कलीसिया में बैठी हुई हैं जिनके बाल छोटे हैं, वे मसीही हैं। और जिस पर मैं इस बात को रख रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है, ये तो ऐसा है जिस तरह से आपको सिखाया जाता है। देखा, ऐसा ही है, आपके प्रचारक ने आपको यह कभी भी नहीं बताया, लेकिन यदि इस भवन की कोई स्त्री ऐसा करती है तो वो दोषी है। देखो, क्योंकि हम निश्चित रूप से उन्हें इसके बारे में बताते हैं। अब इसे देखें, एक पुरुष, क्योंकि सातवां पद, क्योंकि एक पुरुष। अब यहाँ कौन बोल रहा है? अब कभी कभी एक महिला कहती है, ओह पौलुस एक महिला से घृणा करने वाला था। खैर, अब जबकि हम उस पर हैं, आइए हम यहाँ गलतियों 1:8 की ओर जाएंगे और देखें कि पौलुस इस विषय में क्या कहता है। गलतियों 1:8 में देखें, आप देखेंगे कि पौलुस ने यहाँ गलतियों 1:8 में कहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार जो तुमने पहले ही सुना है तुम्हें सुनाए तो शापित हो। अब मुझे दोष मत देना, आप उसे दोष देना। देखो, क्योंकि पुरुष को अपना सिर ढकना नहीं चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा और स्वरूप में है, परंतु स्त्री महिमा और पुरुष के स्वरूप में है। अब अगला पद देखिए, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई थी। अब मेरा मतलब अब सच्चे प्रेम और मधुरता से है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे वैसे ही समझेंगे जैसे मैं इसे कहता हूँ। लेकिन अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री की नाई, अमेरिका में उनकी महिलाओं के लिए दुनिया के किसी भी देश से कुछ सबसे नीचे स्तर के अपमानजनक कानून है। पेरिस, फ्रांस एक आसमान की ऊंचाई को छूने वाले हो सकते हैं, उसी तरह से करते हैं जिस तरह से अमेरिका उनकी महिलाओं को करने देता है। यह एक शर्मनाक बात है। क्या आपने एहसास किया है कि अमेरिका का ईश्वर महिला है? मैं इस बाइबल से आपको यह साबित कर सकता हूँ। यह सही है। क्या आपको एहसास है कि इसे इस तरह से आना होगा ताकि कैथोलिक कलीसिया कुंवारी मरियम के उनके सिद्धांत को ला सके? अब यदि स्त्री पुरुष के लिए नहीं बनी है, ना यदि एक पुरुष एक स्त्री के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन एक स्त्री को एक पुरुष के लिए बनाया गया था, तो आप भला एक स्त्री की आराधना कैसे करने जा रहे हैं? समझे? अब इसने क्या किया? वो पेरिस में शुरू हुआ और हॉलीवुड में आ गया। अब पेरिस उनके मॉडल और उनके फैशन और चीजों को लेने के लिए हॉलीवुड आना होता है। ये हमारी अमेरिकी महिलाओं का अपमान हो रहा है। यह क्या है? हमारा देश इतना नीचे आ गया है, इतना तक कि उन्होंने पुरुषों से नौकरियां भी छीन ली और स्त्रियों को यहाँ उनके स्थानों में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि उनमें से 90% लगभग वेश्याएं हैं। और पुरुषों के निकाले जाने के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उन पुरुषों की नौकरियों में रखा है और वे इतने नीचे चले गए हैं, इतना तक कि उन्होंने महिलाओं को शांति अधिकारियों के नाई सड़क पर रखा है। यह किसी भी देश के लिए शर्म की बात है। जी हाँ श्रीमान, इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? भाई ब्रैनम, आप इस विषय में क्या करते हैं? मुझे इसका आदर करना है। मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ। मैं वही करता हूँ जो बड़ा बॉस करने के लिए कहता है। यदि कोई परिवार कभी भी परिवार के लिए अपना आदर खो देता है, बच्चे माता पिता के प्रति सम्मान खो देते हैं, उस परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यदि कोई कलीसिया कभी अपने पास्टर का आदर खो देती है, इसलिए वो कलीसिया खत्म हो जाती है। और यदि एक राष्ट्र कभी सर्वोच्च न्यायालय और उसके फैसले के प्रति आदर को खो देता है, तो वह राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह बिल्कुल सही है। हमें उन चीजों का आदर करना चाहिए क्योंकि वे बड़े बॉस हैं। देखो, लेकिन यह आरंभ में यह सही नहीं होता है। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक मनुष्य, उत्पत्ति का पहला अध्याय, जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और पुरुष को और पुरुषों और महिलाओं को बनाया और परमेश्वर ने हवा से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर अधिकार करेगा, तुम्हारा अधिकारी होगा। इस बात को अमेरिका में बोलें और देखें कि आपको कहां मिलेगा। लड़के ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष पर अधिकार करती है, उन्हें ऐसा करना है। सार्वजनिक स्थान तैयार किए गए हैं। मुझे लाना पड़े तो मैं अपने स्थान से दर्जनों भली या सभ्य महिलाओं को ला सकता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि सभी महिलाओं को कभी काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका पति बीमार हो या ऐसी ही कोई बात हो और उन्हें काम करना पड़े, लेकिन यदि उन्हें नहीं करना है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका स्थान घर पर है, उनका छोटा सा महल ठीक ऐसा ही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। और हमारी अमेरिकी महिलाओं को विशेष अधिकार मिला है कि जाकर और सुअर खाएं या मरे, यहाँ तक कि सारे जानवरों और आदि में जब वो चीज प्रबल होती है तो यह बात जगह लेती है और यह उसकी पूरी जाति को अपमानित करती है। अफ्रीका में एक छोटी सी चिड़िया है और वो एक चुगने वाली छोटी सी चिड़िया है। अब आमतौर पर मादा हमेशा दोनों में से सबसे कुरूप होती है, नर हमेशा सबसे सुंदर होता है। नर हिरण, नर बारासिंगा, नर तीतर, वो नर मुर्गा और हमेशा ही सबसे, क्योंकि मादा घरेलू पक्षी है। वह घोंसला बनाती है, वो अपने बच्चों को पालती है, वह अपने छोटे बच्चों को पालने पोसने के लिए बाज, सांप, भेड़िया या जो कुछ भी है उनसे छिपाए रखती है। लेकिन उस जाति में जहाँ या वर्ग जो महिला या उस स्त्री में होती है, यह सुंदरता में प्रबल होती है, यह हमेशा एक अपमानजनक नमूना है। अफ्रीका में आप एक पक्षी लें, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया है और महाद्वीपों में केवल एक ही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि मादा नर की तुलना में अधिक सुंदर है। और जब यह करता है, वो पक्षी एक नित्य वेश्या होती है। वो इधर उधर भागती फिरती है और एक साथी को ढूंढती है और ठहरती है और एक नर के साथ एक होने के बाद अंडों का ढेर देती है और उस अंडों पर साथी को बैठाती है और उस समय पर वो निकल पड़ती है और दूसरे साथी का शिकार करती है। यह बिल्कुल सही है। देखा मेरा क्या मतलब है? अब इसमें देखो, आज अमेरिका में हमारी महिलाओं को, कुछ दिन पहले केंटकी के एक युवक ने मुझे बताया कि यहाँ केंटकी में किसी एक कारखाने में 800 महिलाएं काम कर रही हैं। और उसने कहा, मैं शायद ही बद जबानी में सुरक्षित महसूस कर सकता था, जो कि उनमें से 400 पूरी तरह से सड़क पर की वेश्याएं हैं और बच्चों के साथ विवाहित महिलाएं हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी को वहाँ पर ले गया और एक मंडली के साथ काम किया और फिर उसने उसे खत्म करना चाहा और दूसरी एक पुरुष को गोली मारने के लिए निकली और दूसरी एक काटने और लड़ने वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सही नहीं है। महिला को पीछे रसोई में रखें जहाँ से वो संबंध रखती है, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उसे सार्वजनिक कार्य में लगा देते हैं, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता अमेरिकी महिलाएं उनकी नाक को फड़फड़ाकर और कहती हैं इसमें कुछ भी नहीं है और तुम मुझे दिखाओ। निश्चय ही आपको ऐसा करना ही है, क्योंकि बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि आप ऐसा करेंगी। आपको इसे करना ही है। और यहाँ जब ऐसा बहुत समय पहले एक मेथोडिस्ट कलीसिया में हुआ करता था, यदि कोई स्त्री अपने बाल को कटवाती है तो उसे कलीसिया से निकाल दिया जाता है। निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया। जी हाँ, वास्तव में नाजरीन, पिलग्रिम, होलीनेस, पेंटिकॉस्टल ऐसा सभी किया करते थे। क्या हुआ आप जानते हो क्यों? आपके पास पुलपिट के पीछे कुछ डरपोक लोग हैं। यह बिल्कुल सही बात है। किसी को डर है, उनके खाने के बिल का डर है कि आप उन्हें बहिष्कृत कर देंगे, उन्हें कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। उनके पास खड़े होने, परमेश्वर के वचन पर खड़े होने का साहस नहीं था, चाहे इससे दुख पहुँचे या इससे नहीं पहुँचे। यह बिल्कुल सही बात है। यहाँ सुनना, पुरुष अधिकारी होता है। आपको नहीं लगता कि आप घर का अधिकार करें? आप घर के अधिकारी नहीं हैं। आप बिल्कुल बहने अब गुलाम नहीं हैं, लेकिन आप एक सहायक हैं। और आदम, पुरुष का अपनी पत्नी पर अधिकार होता है और वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदार होता है। परमेश्वर पुरुष को उसकी पत्नी के लिए उत्तर देने को लगाता है। अब पढ़ें और देखें कि क्या परमेश्वर अब ऐसा कहता है। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में और महिमा है। परमेश्वर एक स्त्री नहीं है, परमेश्वर एक पुरुष है। आप जानते हैं कि जब वे कुंवारी मरियम और उन सबको ऐसा बनाते हैं और बिछवाई या बिछवाई करने वाली और ऐसा ही सब कुछ बनाते हैं और कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि यह मुझे किस बात की याद दिलाता है? वो बड़ी देवी डायना, जिसे पौलुस ने फटकार लगाई और भगा दिया। ये सही है, उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर कोई स्त्री नहीं है। एक चट्टान मैदान में गिरी और उन्होंने कहा कि देवी ने उनके मूर्ति को नीचे गिरा दिया। यही कारण है कि कुरिन्थ की स्त्री और वहाँ पर उसमें जिसने डायना की आराधना की, वे प्रचारक बनना चाहती थी। उन्होंने कहा, क्योंकि आत्मा ने हमें बताया कि हम प्रचार कर सकते हैं। उसने कहा, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से आया और यह केवल तुम में से ही आया? यदि कोई मनुष्य अपने आप को आत्मिक या भविष्यवक्ता समझता है तो वह जान ले कि मैं जो कहता हूँ वो प्रभु का आदेश है। स्त्री चुप रहे और कलीसिया में अधीनता में रहे, न कि शिक्षा दे और न कोई अधिकार को करे। ठीक ऐसा ही है, यही है जो वचन ने कहा। देखा, और परमेश्वर न्याय के दिन प्रचारकों के एक झुंड को इसके लिए उत्तर देने को लगाएगा। तो ठीक है, सुनना, आप कहते हैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा सिखाया गया था। आप अब अच्छी तरह से जानते हैं, यह सही है। यदि आप या कोई व्यक्ति दवा की खुराक लेना आरंभ करता है और कोई आपको बताता है कि यह ये संख्या नामक विष है और आप कुछ भी हो आगे बढ़कर और इसे ले लेते हैं, उसके बाद यह आपकी खुद की गलती है, समझे? अब इसे सुनना, क्योंकि पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। आप में से कोई इसे पढ़ रहा है? ये पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 10वां पद है। यदि आप ध्यान दें, अधिकार क्यों? दूतों का, पहला कुरिन्थियों, क्योंकि दूत मनुष्य हैं, संदेशवाहक हैं। देखो, यह फिर से इंग्लिश का छोटा ए है। जहाँ तक दूतों का संबंध है, स्वर्गीय दूतों का, यह एक इंग्लिश का बड़ा ए है, बड़ा ए अक्षर। जहाँ यह छोटा ए आता है, यह मनुष्य दूत है। तो भी प्रभु में न तो पुरुष या स्त्री, न ही पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। विचार करो, तुम आप ही विचार करो, क्या यह सोता है कि स्त्री परमेश्वर से प्रार्थना करे छोटे बाल के साथ उघारे सिर? अब इस पर सोचें। अब देखो, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे, कहते हैं यह किससे संबंधित था? बाल से। क्या आप नहीं देखते कि पौलुस किस बारे में बात कर रहा है? बाल, लंबे बाल, यदि स्त्री के बाल लंबे होने चाहिए। अब 14वां पद, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? आपने इसे पकड़ा, एक पुरुष के लिए लंबे बाल रखना शर्म की बात है, लेकिन एक स्त्री, यह एक स्त्री का स्थान है। परमेश्वर ने एक पुरुष को एक स्त्री से अलग ही बनाया, वर्ग और देखने में और हर एक चीज में। उसे ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बाइबल ने कहा कि यदि कोई स्त्री तंग पतलून या जोड़ा या पुरुष से संबंधित कोई वस्त्र पहन ले, यह परमेश्वर की दृष्टि के सामने एक घृणित और गंदी और अश्लील बात है, और परमेश्वर उससे इसका भुगतान करवाएगा। आप किसकी सुनेंगे? लेकिन यह बाइबल है। और आप यहाँ वहाँ जाकर और कहते हो, क्यों? मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा है। देखो कि महिलाओं का तंग पतलून पहनना ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अलग बनाया। यह उनसे चाहता है कि वे भिन्न कपड़े पहने। और बाइबल ने कहा, यदि कोई स्त्री यहाँ तक पुरुष से संबंधित वस्त्र पहन भी ले तो यह एक घृणित बात है। आप जानते हैं कि घृणित बात क्या है? यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की दृष्टि में अश्लील है, और वो महान यहोवा जो नीचे आपकी ओर देखता है जैसे आप एक अश्लील चीज हैं। और बाइबल ने कहा, और आप जो कहते हो, अब आप में से कुछ महिलाएं, आपकी युवा लड़कियां जो लगभग किशोरावस्था है, 18-20 वर्ष की उम्र की, उन्हें यहाँ वहाँ इस तरह से कपड़े पहने बाहर जाने देते हैं। और आप भी माताएं, देखा, जब आप बाहर जाते हैं और उन तंग पतलून इत्यादि को पहनती हैं और जीती और सड़क पर चलती हैं और वे खराब कपड़ों को पहनती हैं जो वे आजकल बना रहे हैं, और आपको कुछ ऐसा दिखाने को लगाएंगे जो आप नहीं हैं, देखा, और आप वहाँ सड़क पर जाते हो पूरी तरह से कामुकता रूप से दिखते हुए। आप अपने पति और हरेक के सामने बिल्कुल निर्दोष और साफ हो सकते हैं, लेकिन यदि आप सड़क पर बाहर निकलते हो और कोई पुरुष आपकी ओर देखता है क्योंकि आपने अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत किया है, तो आप दोषी हो, और आपको न्याय के दिन हर उस पुरुष के साथ व्यभिचार करने के कारण उत्तर देना होगा जिसने आपको इस प्रकार देखा। यही है जो बाइबल ने कहा। बाइबल ने कहा, जो कोई किसी स्त्री को उसके प्रति वासना की दृष्टि से देखता है वो अपने हृदय में उसके साथ पहले ही व्यभिचार कर चुका है, और आप दोषी हैं। और करें, आप न्याय पर आते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप मेरे हृदय को जानते हैं, मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया, मैं अपने पति के प्रति सच्ची बनी रही। लेकिन यहाँ पर एक पुरुष होगा, यहाँ एक और होगा, यहाँ एक दूसरा, 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 15, 20, 30, 19 से 40 वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, व्यभिचार करने के दोषी, क्यों? कुछ पुरुष ने आपकी ओर देखा था। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, आपने अपने आप को इस तरह से क्यों प्रस्तुत किया जब परमेश्वर ने आपसे कहा कि उन्हें न पहनो? ऐसा करना घृणित बात थी। और आप जाकर ये सुनते हो, सूसी को कौन प्रेम करता है, या ये क्या है? क्या आपने जान लिया कि उस सूसी को कौन प्रेम करता है? इससे क्या बात ने जगह ली? पति, आप सभी ने यहाँ हाल ही में अखबार में देखा है, जब हम बाहर कैस्पर व्योमिंग में थे तो यह बाहर आ गया, और उसका नाम क्या है, वो व्यक्ति जो उस हम सूसी से प्रेम करते हैं पर था, या जो उस दुनिया में क्या था, यो ओह, जिसके लिए आप सारे बुधवार की रात घर पर रहते हैं और जिसे देखने के लिए प्रार्थना सभा छोड़ देते हैं, अब ये क्या है, हम प्रेम करते हैं, इसका क्या नाम है? मैं लूसी से प्रेम करता हूँ जो उसका पति होना चाहिए था, यहाँ वहाँ फिरता है, जो वहाँ उस ओर रेनो नेवादा में मिला, एक अश्वेत लड़की के साथ वर्षों से उसके साथ रह रहा है, और यही है जिसे देखने के लिए आप घर पर रहते हैं, बजाय इसके कि जाकर सुसमाचार को सुने, महिला इसे स्वीकार करती है। ओह दया, यीशु मसीह के बाहर कुछ भी साफ नहीं है। आपका हृदय धन्य है भाई, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इनमें से कुछ, आप कहते हैं, ओह तो दर्जे की ओर देखें, कुछ तो हमारे पास सबसे खराब गिद्ध है, मुर्दाखोर सुंदर पक्षी है। आप किसी पक्षी को उसके पंखों से नहीं आंक सकते। देखिए तो बस इतना याद रखना, ओह प्रभु, अब देखें, क्या यहाँ तक स्वाभाविक भी नहीं? यह तो 14वां पद है, तुम्हें सिखाते हैं कि एक पुरुष के लिए लंबे बाल रखना ये शर्म की बात है, ऐसा एक महिला को करना है। लेकिन यदि किसी महिला के लंबे बाल हो तो यह उसके लिए महिमा की बात है। अब वो किस विषय में बात कर रहा है? एक टोपी जिसे आप कैथोलिक लोग कलीसिया में पहनते हैं, ना ही वास्तव में अपने सिर के ऊपर एक रुमाल के साथ जरा सा ढकना, वो आपके बालों के विषय में बात कर रहा है। अब और यदि कोई स्त्री अपने बाल कटवाती है तो वह अपनी महिमा को काट देती है और उसे वेदी पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। देखिए उसने यहाँ क्या कहा, क्या एक महिला के लिए सिर को खुला रखकर प्रार्थना करना सामान्य बात है? यहाँ कहते हैं तो ठीक है, उसे अपने बाल कटवाने होंगे, सो तब वो मुंडवा कर साफ कर दे। और यदि वह मुंडवा कर साफ कर देगी, कहा यह एक अपमान की बात है, ऐसा करना एक महिला के लिए शर्म की बात है, तब कहा उसे ढकना चाहिए। अब पौलुस का पत्र पढ़ रहा हूँ, आप सब यह आप पर निर्भर करता है। देखिए, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए महिमा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। क्या उसने कहा कि उसे टोपी दी जाए? आप कैथोलिक लोग या प्रोटेस्टेंट या कोई भी एक जो कलीसिया जाते हैं और टोपी पहनना चाहते हैं, कहते हैं ठीक है मैं कलीसिया जाता हूँ, मुझे एक टोपी पहननी चाहिए। नहीं, आपको अपने बालों को बढ़ने देना चाहिए, यही वो अंतर है। देखा, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, और बिना सिर ढके कलीसिया में आना, वेदी पर प्रार्थना करने के लिए जाना, उसके लिए शर्म की बात है। लेकिन यदि एक पुरुष ऐसा करता है, मैं नहीं सोचता कि मैं उस शब्द का उच्चारण कर सकता हूँ, CONTE, वाद विवाद। आप जानते हैं कि वाद विवाद क्या है, तो ये जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। अब यदि आप इसके बारे में बहस करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ बहस करें तो ठीक है, यदि आप इसके बारे में वाद विवाद करना चाहते हैं, ओह कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ हम उन्हें आगे बढ़ने दें। क्यों? मैं सोचता हूँ कि यह कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं है कि बाल किस तरह से हैं, जो कुछ भी हो ये तो हृदय में क्या है, यह सच बात है। यदि हृदय सही है तो बाल सही होंगे। आगे बढ़ें। यदि आप विवादी होना चाहते हो, तो पौलुस ने कहा हमारे पास ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है, न ही चर्च ऑफ गॉड। कहा यदि आप केन के पक्ष से संबंध रखना चाहते हैं, तो ठीक है आगे बढ़ें, लेकिन यही है जो पौलुस कह रहा था। ओह, और मेरा मतलब हंसना नहीं है, क्योंकि यह हंसी की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मित्रों, इसे देखना शर्म की बात है कि जिस तरह से इन चीजों को करने की अनुमति दी गई है। मैं सुनना आपके लिए, मेरी प्रिय बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप में सबसे अच्छी दिखें और अपने आप में बेहतर बने, यही है जो आपको होना चाहिए, यही है जो आपको बनना चाहिए, और आपको जितना हो सके उतना मधुर और निर्मल और हर एक चीज होना चाहिए जितना आप हो सकती हैं। जब आपका पति आता है, ठीक उतना ही जैसे वो आपका हृदय प्रिय है, और आपको उससे बस एक चुम्बन के साथ दरवाजे पर मिलना चाहिए, उसके प्रति उतना ही प्रेम जितना उस दिन था जब आपने उसे वेदी पर अपना पति होने पर चूमा था। ये सही है, मैं आपको आपके अच्छा दिखने और अपना सबसे अच्छा होने के लिए दोष नहीं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरह से रहें। परमेश्वर जानता है कि मैं चाहता हूँ। यहाँ कुछ समय पहले मैं जैक शुलर से बात कर रहा था। जैक शुलर को किसने सुना है, जो मेथोडिस्ट के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक हैं? उसने कहा एक महिला ने आकर और कहा बाल पूरी तरह से गंदे थे और च्युइंगम को चबा रही थी और उसने आधे कपड़े पहने हुए थी। कहा आप जानते हैं मेरा पति अब यहाँ तक मेरे साथ रहेगा भी नहीं। जैक शुलर ने कहा मैं उसे दोष नहीं देता, ये सही है। अब लेकिन आपको जो करना है, आपको सही ढंग से होना चाहिए। आपकी नवीनता और सुंदरता को हॉलीवुड में से ना लें, इसे बाइबल में से लें, परमेश्वर के सामने। एक महिला बने, एक महिला की तरह व्यवहार करें, एक महिला की तरह कपड़े पहने, स्वच्छ रहें, एक महिला की तरह व्यवहार करें, उन्हें न पहने। कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी को बाहर जाने देता है और पुरुषों के सामने उन छोटी चीजों को पहनने देता है, और वे छोटी छोटी खराब चीजें वे घास के मैदान पर बाहर निकलती हैं और घास के मैदान में घास काटती हैं और उस तरह की चीजें करती हैं। महाशय, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा अभिप्राय बुरा होना नहीं है, मैं परमेश्वर जानता है कि मेरा ऐसा हृदय है, लेकिन मुझे करना होगा, मुझे बहुत कुछ बदलना होगा, इससे पहले मैं इसे मेरे अपनों को करने दूं, मैं वहाँ पहाड़ी की ऊंचाई पर से अगुआ बनूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ, आप देखें, और जब मैं नहीं कर सकता तो मैं वहाँ से हट जाऊंगा, यह सही है। ओ भाई, ऐसा करना महिलाओं के लिए शर्म और अपमान की बात है, और मेरा मतलब यह नहीं है बहन, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कलीसिया का कोई सदस्य नहीं है, लोग बस यहाँ आते हैं, लेकिन यह परमेश्वर का घर है और हम पूरी तरह से लोगों को बताते हैं कि उन चीजों को ना पहने, कि ये आप न्याय के दिन इसके लिए उत्तर देने जा रहे हैं। अब यहाँ देखें और अपने बालों को बढ़ने दें, देखो और एक महिला बने। अब इसमें मैं यह आज्ञा देते हुए, मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से इसलिए भलाई नहीं परंतु हानि होती है, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और इत्यादि, यह अब प्रभु भोज की मेज पर जाता है। अब इसे सुनिए, यही कारण है कि वे दूध। अब भाई पाल्मर, मैं आपको स्टेप पर नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ पर वही प्रचार करते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह और ठीक तरह से जानते हैं और आप एक प्रचारक होने के नाते आप जानते हैं कि सत्य है भाई, तो ठीक है। तो यहाँ वे दूत मनुष्य हैं, यदि आप इसे ध्यान दें भाई पाल्मर, यह छोटे अक्षर में है वे दूत, और बाइबल आगे बढ़ती है, वो पुरुष और उसकी पत्नी के बारे में बात करती है। देखिए, यही वो विषय है। इसी तरह से लोग बाइबल में बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं, वे कहते हैं तो परमेश्वर यहाँ एक बात कहता है और एक नहीं, आप विषय से हट गए हैं, ठीक एक ही विषय पर बने रहें। बस ऐसा ही है, वह पुरुष और पत्नी के बारे में बात कर रहा है। अब एक और चीज जो मैं बंद करने से ठीक पहले लेना चाहता हूँ, इसमें मुझे लगभग 2 मिनट लगेंगे। 1000 वर्ष के राज्य के बाद वे संत कहाँ पर होंगे और उनके पास कैसा शरीर होगा? मैं सोचता हूँ कि ये सबसे प्यारा प्रश्न है, मैं बस इसे पसंद करता हूँ। आइए अब सीधे इसके अंदर देखें। आदि में परमेश्वर, हम कुछ मिनटों के लिए हमारी इब्रानियों की शिक्षा पर वापस जाएंगे। परमेश्वर 7 रंगों का यह महान विशाल झरना था, कितने यह जानते हैं, समझे? और कितने जानते हैं कि परमेश्वर के पास 7 आत्माएं हैं, पूरी तरह से 7 आत्माएं, और वहाँ मेमने में 7 आंखें हैं और इत्यादि, यह सब अब एक साथ आ रही हैं। देखा, अब यह परमेश्वर था। अब जब वो लोगोस परमेश्वर से बाहर निकला, जो परमेश्वर इस एक बड़े झरने से एक शरीर के अंदर एक मनुष्य के स्वरूप में आ रहा था, और इसने लोगोस को बनाया जिसे हम दैविक शरीर कहते हैं। अब यदि आप उस दैविक शरीर को लें, जब आप उसकी ओर देखते हैं तो यह एक मनुष्य है। अब जबकि हम अब यही है जहां हम आदि में थे, अब आप इसे अभी नहीं समझते हैं, लेकिन आप आदि में इसी तरह से वहां पीछे थे जब मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो उसने उसे दैविक शरीर बनाया और उसने उसे केवल देह में रखा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसकी समानता में वे थे, उत्पत्ति 2 में वहाँ, या उत्पत्ति 1:28, मैं सोचता हूँ कि यही है। भूमि को जोतने के लिए अभी तक कोई मनुष्य नहीं था और परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया था, ये सही है। भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य नहीं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा नीचे किया और उसे जानवर के जीवन में डाल दिया, यही यह शरीर है, बस जानवरों की तरह, जिससे कि वो भूमि को जोत सके, स्पर्श कर सके। वह दैविक शरीर स्पर्श नहीं करता है, यह ना ही देखता है, स्वाद लेता, गंध लेता है, ना ही सुनता है। ये चेतनाएं जो हमारे पास हैं, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को वहाँ पर रखा ताकि स्पर्श करे और महसूस करे। और जब वो अदन की वाटिका से होकर चला, पहले एक दैविक शरीर के नाई, जैसे पवित्र आत्मा यहाँ है, अब यहाँ चल रहा है, इसने पशु जीवन का नेतृत्व किया, इसने हर एक चीज को नियंत्रित किया, लेकिन यह भूमि को नहीं जोत सका। देखो, इसलिए परमेश्वर ने उसको देह में रखा, जिससे कि वह भूमि को जोत सके, उसे उसकी 5 चेतनाओं को देता है, भूमि को जोतने और उन दाब की बारियों और इत्यादि को तैयार करने के लिए। और फिर वो मनुष्य अभी भी अकेला दिखाई पड़ रहा था। ओह, यह एक सुंदर तस्वीर है, देखो, क्योंकि जब उसे पहले बनाया गया तब उसे 2 व्यक्ति मिलकर बनाया गया था, उसे नर और नारी दोनों बनाया गया, वो मनुष्य था। बाइबल ने कहा कि वो था, परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी दोनों बनाया, उसे बनाया। अब ध्यान दें, जब मनुष्य दैविक शरीर से अलग किया गया और देह में डाला गया, वह बस पूरी तरह से वहाँ नहीं था, उसके अस्तित्व का एक भाग अब भी एक दैविक शरीर था, इसलिए यह सही नहीं दिख रहा था। वहाँ गाय में नर और मादा रखे गए, वहाँ घोड़ा रखा गया और वहाँ बैल रखा गया और हर एक चीज रखी गई, जोड़ा था। लेकिन आदम वो ये था, देखिए वहाँ कुछ तो कमी थी, वहाँ उसी चाहत ने दिखाया कि एक साथी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपने इसे समझा? और वही विचार कि हमें यहाँ पर मरना है, कि हम परेशानी में हैं और उलझे हुए हैं, और हम एक ऐसे जीवन की लालसा करते हैं जिसमें कोई मृत्यु नहीं है, यह दिखाता है कि ये हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। देखा, और आदम अकेला था, और परमेश्वर यह दिखाने के लिए कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब मैं उसी चीज में वापस आ रहा हूँ, बस कुछ क्षण में। देखो, उसने कभी भी जाकर और मिट्टी को लेकर और हवा को नहीं बनाया, लेकिन उसने मूल मिट्टी में से बनाया आदम। उसने उसके बगल से एक फसली को लिया और उसका सहायक बनाया, और वो थी हवा। वो पुरुष के लिए बनाई गई थी और पुरुष का भाग थी। वो आरंभ में उसका भाग, सृष्टि में एक दैविक शरीर में। वो यहाँ नीचे इस सृष्टि में उसका भाग थी। वह दूसरी सृष्टि में विभाजित नहीं हो सकती, उसे उसी सृष्टि में बनाया जाना था। बिल्कुल यही कारण है कि मसीह और परमेश्वर को वही व्यक्ति होना था। ये कुछ भी अलग नहीं हो सकता। यदि वो एक भला मनुष्य या भविष्यवक्ता रहा होता था, तो वो एक छुड़ाने वाला नहीं होता, उसे स्वयं सृष्टिकर्ता होना था। लेकिन अब वो फिर भी एक दैविक शरीर है, आप देखना, और जिस तरह से वो उस समय था। अब एक मनुष्य यहाँ नीचे आया और वो अद्भुत था, और परमेश्वर ने उसे प्रेम किया। उसने कहा, यह सुंदर है, उन्हें धरती पर रहने दो और हमेशा के लिए वहाँ जिए। बस ऐसा ही है, अनंत काल के लिए और आगे उसे बस बढ़ने दो, और हर एक पौधा और हर एक चीज ऐसे ही लाने दो, और मनुष्य जीवित रहे और पशु और बाकी की हर एक चीज हमेशा और हमेशा के लिए जीवित रहे। यह ठीक बात है। देखा, और फिर पाप ने प्रवेश किया, और मैं इस बयान को देना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोग इस एक वचन पर बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, और वो है भजन संहिता 23 पर। वे इसे इस तरह पढ़ते हैं, हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घोर अंधकार की घाटी में से होकर चलूं। अब ऐसी कोई चीज नहीं है। बाइबल यह नहीं कहती कि घाटी की घोर अंधकार की छाया, मृत्यु की छाया की घोर अंधकार की घाटी। कहता है, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर चलूं। अब इससे पहले छाया बन सके, छाया बनाने के लिए इसके पास प्रकाश होना चाहिए। देखो, दाऊद एक भविष्यवक्ता होने पर, और वो अभिषेक के नीचे था, उसने कोई गलती नहीं की, उसने केवल सच को कहा। जी हाँ, चाहे मैं ना ही घोर अंधकार की घाटी में से होकर चलूं, लेकिन मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर। तब छाया बनाने के लिए आपके पास कुछ तो प्रतिशत एक प्रकाश होना चाहिए, और यह यहाँ इसी तरह से है। हम दोनों स्वाभाविक और अलौकिक हैं। यह शरीर मृत्यु के अधीन है, और एक स्त्री के द्वारा लाया गया था, ना ही किसी के भी द्वारा, बल्कि इसके द्वारा, ना ही परमेश्वर के द्वारा। आप आदम और हवा के पुनः उत्पादन हैं। काले हो, गोरे हो, या जो कुछ भी हो, आप उत्पादन हैं। आदम और हवा के वंशज हैं, जिससे आपका शरीर बनता है। पाप में जन्मा, अधर्म के आकार में लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आते हैं। आप अपने जीवन के आरंभ में शापित और दोषी रहे हैं, यहाँ तक बिना किसी मौके के। अब क्योंकि वो आत्मा जो आपके पास है, स्वाभाविक के द्वारा आया है, और स्वाभाविक के द्वारा आता है जो शारीरिक संबंध से है, जो पुरुषों और महिलाओं की इच्छा के द्वारा एक धरती की संतान को उत्पन्न करते हैं। और उस बालक को अकेला छोड़ दें, और उसे कुछ भी सही बात को न सिखाएं, वह गलत हो जाएगा। उसे न सही और न गलत सिखाएं, वह गलत को ले लेगा, क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव है। छोटी उम्र के बालक की ओर देखें, ना ही उससे बड़ा, बस बहुत पागल हो जाता है। वह अपने हाथों को मरोड़ता है, और चेहरा लाल हो जाता है, और अपनी सांस रोक लेता है, निसंदेह। ये क्या है? ये उसका स्वभाव है। उसने इसे अपने पिता या उसकी माँ से पाया है। एक से माँ के पास इतना गुस्सा होता है कि तुरंत ही लड़ने को आ जाए, या उसके पिता का। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उसके दादा या दादी ने किया। देखो, यह वंशज है, तो यह करवाता है। आप संसार में जन्मे हैं, आप स्वाभाविक के द्वारा आए हैं, और आपका पूरा अस्तित्व काला और गंदा है, और नश्वर है, और शापित है, और नरक में जा रहा है। यह सही बात है। लेकिन जब आप फिर से जन्म लेते हैं, तब परमेश्वर का उजाला उस प्राण के अंदर चमकता है। हालेलुया। उसके बाद यह अब और अंधेरी घाटी नहीं है, लेकिन एक घाटी है जिसमें एक छाया है। हो सकता है कि आप यहाँ देह के साथ पर्दा होंगे, और हमारे चेहरे के ऊपर वे चीजें हों, लेकिन वहाँ पर्याप्त उजाला है। और किसी दिन उस उजाले और अंधकार को अलग होना है, और जब उजाला चमकता है, तो अंधकार भाग जाता है। और जब हम उस देह में मसीह के साथ जाएंगे, तो अंधकार और मृत्यु लुप्त हो जाते हैं और हम सिद्ध उज्याले में बोल उठते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, यहाँ है हम, अब कोई बीमारी नहीं और कोई अंधकार उसके साथ मिला हुआ नहीं है। ठीक अभी हमारे पास बीमारी और आनंद दोनों हैं, और हमारे पास स्वास्थ्य और शक्ति है, और हमारे पास अंदर और बाहर है, और उतार और चढ़ाव और खुशी और दुख इत्यादि है। तो ठीक है, यह बस एक छाया है। इसे जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त उजाला है कि वहाँ उजाला है, और हम अब भी शरीर में हैं, देह में हैं, लेकिन किसी दिन वो दिन चमकने जा रहा है जब मृत्यु का दूत बिस्तर के पास तैयार रहता है। यही है जब डॉक्टर कहता है कि यह पूरी तरह खत्म हो गया है, और यह स्वाभाविक अलौकिक से दूर आ जाता है और उजाला उजाले की ओर लौट जाता है, और अंधकार वापस अंधकार में चला जाता है। तब यह नश्वर अमरता को पहन लेता है, तभी यह दूषित अदूषित को पहन लेता है। यही है जब मरणहार अमरता को पहन लेता है, और हम एक समय की सृष्टि से एक अनंतता की सृष्टि बन जाते हैं। आप पूर्ण अंधकार के साथ वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आपको अंधेरे में उजाले की आवश्यकता है। वहाँ आप है, यही वो शरीर है जो आपको मिलता है। हम क्या करें? ठीक है मेरे प्रिय संत भाई, मेरी प्रिय संत बहन, दुनिया की नींव डालने से पहले जब परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, या अपने स्वरूप में उस मनुष्य को बनाया, और स्त्री को पुरुष के स्वरूप में बनाया, पुरुष की महिमा के लिए उसने आपको एक दैविक शरीर बनाया, बिल्कुल उसके खुद के जैसे ही। जब उसने कहा आओ हम उन सृष्टियों के लिए जो उसने बनाई थी, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए, एक दैविक शरीर। परमेश्वर अभी तक देह नहीं बना था, वो एक दैविक शरीर में था, और मूसा ने उसे देखा। मूसा रोया, प्रभु मुझे आपको देखने दो। उसने कहा उस ओर जाओ और चट्टान में छिप जाओ, दरार में, और मूसा उस दरार में चला गया, और जब परमेश्वर वहाँ से गुजरा तो बिजली चमकने लगी और गर्जनाएं होने लगी, और जब परमेश्वर वहाँ से गुजरा उसने अपनी पीठ इस तरह घुमाई, और मूसा ने कहा यह एक मनुष्य की पीठ थी। हालेलुया, ये कौन था? मलकीसिदक जो नीचे आया, सलेम का राजा, बिना पिता या माता के, न ही दिनों की शुरुआत या न जीवन का अंत, यह वही है, और वो नीचे आया। यही है जिसने अब्राहम से बात की, जिसने उसे इस तरह से एक मांस के छोटे से शरीर को एकत्र किया, और उफ, इसके अंदर सांस को फूका, और उसमें कदम रखा, और नीचे आकर और बछड़े को खाया, गाय का दूध पिया, और कुछ मक्खन और कुछ मकई की रोटी खाई, और वे दो दूत, और जब वे वहाँ चलकर गए और वो सारी चीजें बस लुप्त हो गई और चले गई। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ कुछ समय पहले एक बंदूक की गोली भर रहा था, मेरे पास .22 की बंदूक थी, यह एक .220 स्विफ्ट है, और आप यहाँ के बंदूक चलाने वाले भाइयों को पता है, वो छोटी सी गोली, यह 48 बहुत छोटी तोल वाली गोली है, लगभग इतनी लंबी, नियमित .22 की गोली, ये लगभग .30/06 के चैम्बर की शक्ति पर बारूद को भरता है। अब मैं फैक्ट्री केवल इसे लगभग 4400 फुट प्रति सेकंड तक बारूद भरता है। ठीक है, लेकिन आप अपने आप से अधिक बारूद डाल सकते हैं, और आप इसे प्रति सेकंड 5000 फुट तक की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और या तो यदि आप गोली चलाते हैं, हम एक दिन गोली चला रहे थे, 200 गज की दूरी पर थे, और गोली धूल से टकरा रही थी, बंदूक की आवाज गूंजने से पहले ही उड़ने लगती थी, यह इतनी तेजी से जाती है। फिर आप दांत खोदनी या टूथपिक को लेते हैं, आप जानते हैं दांत खोदनी या टूथपिक पर जो सपाट भाग होता है, और इसे अपने बारूद में डालते हैं, और उस चीज को बारूद से भर दें, बस लगभग 4 या 5 छोटे कण, और वहाँ इसे ऊपर रख दें, और फिर अपनी गोली वहाँ उसमें रखें, यहाँ खड़े हो जाएं, और आपके हाथ में 1 सेकंड में गोली होगी, और वहाँ से 200 फुट की दूरी पर जमीनी सुअर पर गोली चलाएं, या जमीनी सुअर यहाँ तक कभी हिल भी नहीं पाएंगे, गोली वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, गैसों में बदल जाती है। यहाँ एक गोली है जो तांबे और शीशे को एक साथ मिला देती है, और 1/2 सेकंड में यह वापस आ जाती है, इतना तक आप इसे फिर कभी देख भी नहीं पाते हैं। यह 100 अरब वर्ष पहले की तरह वापस गैसों में बदल जाती है, उन गैसों को बनना है, और वापस इसी तरह तांबे और शीशे और इत्यादि में आना है, उन गैसों को स्थिर होना है। अब आप वहाँ हो, इसी तरह से हम यहाँ हैं, हम एक उच्च जीवन से आए हैं, आदि में हम परमेश्वर के स्वरूप में थे, पर्दा और अंधकार हमें अभी इसे जानने से रोकता है। लेकिन यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जगत की बुनियाद से पहले वो उनके साथ था। देखा, हम वहाँ थे, आप अभी इसे नहीं जान सकते, लेकिन आप आदि में थे। और यदि यह धरती पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमारे पास पहले से ही एक प्रतीक्षा कर रहा है, हालेलुया। और फिर हम इस जैविक शरीर की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम एक समय रहते थे, जिससे कि हम खा सकते हैं और हाथ मिला सकते हैं और वेदी के नीचे प्राण चिल्लाते हैं, कब तक प्रभु? 7 कदम हैं जो परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि 7 आत्माएं जैसे ये नीचे आती हैं, तो ठीक है, अब आप परमेश्वर की वेदी के नीचे जाते हैं। वे पुकार रहे थे, प्रभु कब तक? क्या हम वापस जा सकते हैं? या नीचे से होते हुए परमेश्वर ने कहा, बस कुछ समय के लिए, जब तक कि तुम्हारे साथी उसी चीज का दुख न उठाएं जो दुख तुमने झेला है, समझे? और फिर वे प्राण वापस लौट आते हैं और वे फिर से स्त्री और पुरुष बन जाते हैं और हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। जब सारा अंधकार और मृत्यु और बीमारी और अंधकार का शोक ओझल हो जाता है, वहाँ अब कोई और छाया नहीं है, यह पूरी तरह सूर्य का प्रकाश है। सुनना, यहाँ जो है इसे जितना अंधेरा होना है होने दें, यह इतना अधिक अंधेरा नहीं हो सकता इतना तक कि सूरज अंधकार के हर एक अंश को नष्ट न कर दे। अंधकार और उजाला एक साथ अधिक समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि कौन सबसे सामर्थवान है? वो है उजाला। और जब उजाला चमकता है तो अंधेरा भागने लगता है। आमीन। क्या आप खुश नहीं है? क्या आप खुश नहीं है कि आप जानते हैं? कोई संदेह नहीं, वहाँ कहीं कोई छाया नहीं है, लेकिन यह धन्य उजाला जो अब ठीक अभी हमारे हृदय में है, कुछ तो वापस गवाही को दे रहा है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की सामर्थ। और हम यहाँ चलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतरते और सभा के अंदर जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, आप श्रीमती फलाना और फलाना है कि आपने एक फलाना स्थान पर एक फलाना चीज को किया। आप बहुत लंबे समय से इस महामारी से पीड़ित हैं, लेकिन यहोवा यो कहता है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, आप चंगी हो गई हैं, और लंगड़े और अंधे उनके पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और एक मनुष्य की छाया जिसे कैंसर ने खा लिया है जीवन और नए स्वास्थ्य के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं करता जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता है। वो क्या है? यही वो उजाला है जो इस अंधकार में मिलकर आया है, आप देखें, ताकि हमें छुड़ाए, समझे मेरा क्या मतलब है? अब किसी दिन ठीक वहीं वापस चला जाता है, और फिर जब दैविक शरीर फिर से अमरहार देह बन जाता है जैसा कि ये आरंभ में था, तब यीशु आता है, और परमेश्वर, जब मसीह एक होगा, मसीह सिंहासन पर बैठेगा और सारे लोग मानव होंगे, मसीह दाऊद के सिंहासन पर होगा, एक मनुष्य, प्रभु यीशु, कभी भी न मरने के लिए, न ही हम कभी भी मरेंगे, न ही हम कभी भी बीमार होंगे, अब कोई दुख नहीं होगा और हम 1000 वर्ष जीवित रहेंगे। और जब इस धरती पर 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसके बाद शैतान ऊपर आता है और दूसरा पुनरुत्थान आता है, अधर्मी का पुनरुत्थान। वे एक बड़ी सेना इकट्ठे होते हैं, समुद्र की बालू की नाई और संतों की छावनी को घेरने के लिए आते हैं। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर आकाश से आग और गंधक बरसाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। और यूहन्ना ने कहा, मैंने एक नया आकाश और एक नई धरती को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली धरती जाती रही और फिर समुन्दर न रहा, और मुझ यूहन्ना ने पवित्र नगर नया यरूशलम को देखा, जो स्वर्ग से परमेश्वर से नीचे उतर रहा था, अपने पति के लिए सजी दुल्हन की नाई तैयार की गई। वहाँ आप हैं। वहाँ उसने कहा, पत्नी, मेमना और दुल्हन हमेशा के लिए वहाँ होंगे। वहाँ एक नई धरती होगी, लाखों और लाखों वर्ग मील। ओह प्रभु, वो नगर बाइबल 15,000 वर्ग मील के नगर की माप को बताता है। यह 15,000 मील लंबा, 15,000 मील चौड़ा और 15,000 मील ऊंचा है। ठीक ऐसा ही वर्णन बाइबल उस नगर के बारे में बताता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वहाँ अब समुद्र नहीं है, वहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं थी। ओह, वहाँ क्या ही सुंदरता होगी। और वहाँ पर, वहाँ ठीक परमेश्वर के सिंहासन पर एक झरना है जो सिंहासन के सामने बहता है। वहाँ दोनों ओर एक पेड़ है जीवन की नदी के, और इस पेड़ में 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फल को लाता है। वहाँ 24 प्राचीन हैं, वहाँ दुल्हन है, वहाँ 44,000 हैं, मंदिर के सेवक अरे भाई हम कहीं तो जा रहे हैं, चीजें हमारे सामने रखी हैं, 4-24 प्राचीन, 144,000 सेवक, दुल्हन मसीह के साथ बैठती है। ओ प्रभु आप बात करते हो, मेरा घर प्यारा घर, आमीन। ये सोचकर कि मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है और आपको वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है, और आप इस अंधेरे में क्यों चलना चाहेंगे और कोई प्रकाश को ना देखें और मर जाएं और गड़बड़ी में चले जाएं और कुछ भी ना बने? क्योंकि जब उजियाला अपने सर्वोच्च अधिकार को ले लेता है तो वहाँ अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जाकर देखो उजियाले के आने पर अंधेरा कहाँ चला गया। वो तब होता है जब सारी चीजें वापस परमेश्वर के पास चली जाती हैं। ऐसा था, अंधकार का आरंभ था, अंधकार का एक अंत था। उजाले का न कभी आरंभ था और न ही अंत, परमेश्वर का न कभी आरंभ था और न कभी अंत। तो किसी दिन पूरी अनैतिक दुनिया अपने सारे पाप और इसकी सुंदरता के साथ तथाकथित और इसकी सारी शानदार बातों और अति सुंदरता और उसका सारा आकर्षक और सब कुछ शून्य के अंदर धूमिल हो जाएगा, और ये अब और नहीं रहेगा, ये अब और नहीं रहेगा, और अब कोई विचार नहीं रहेगा। इसने कहा यहाँ तक कि ये अब और याद में भी नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु की आशीष हमेशा उसके साथ रहेगी। हमारे पास उसके अपने महिमामय शरीर के जैसा शरीर होगा, और उसके साथ रहेंगे और उसके साथ खाएंगे और उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए और हमेशा के लिए और समय के युगो युगो के लिए वास करेंगे, और अनंत युग बिना अंत के संसार के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और आज रात आपके पास एक चुनाव है। यदि आप उस स्थान के सम्मुख आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी कलीसिया जाते हो, आप कितने भी अच्छे सदस्य हो, आप नाश हुए हैं जब तक कि मसीह आपको उस अंधकार में नया जीवन न दे जिसमें आप चलते हैं। आप हो सकता है धार्मिक हो, धार्मिक सुनना मित्रों, धर्म बुद्धिमान होता है। देखा केन के सारी संतान के पास हमेशा धर्म रहा है। जब यीशु आया उन यहूदियों के पास एक धर्म था, लेकिन उन्होंने उद्धार को अस्वीकार कर दिया। आज रात आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, आप प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस हो सकते हैं। आप हो सकते हैं उतने ही धार्मिक हो, आप कलीसिया में जाकर गवाही को दे सकते हैं। आप हो सकता है गीत को गाएं और जय जयकार करें और प्रभु की स्तुति करें। आप हो सकता है कलीसिया के लिए अपने दशमांश को लाएं। आप हो सकता है अपने पड़ोसी के साथ ठीक व्यवहार करें जिसका आपकी अनंत मंजिल से कोई लेना देना नहीं है। केन ने उसके हर एक अंश को किया पूरी तरह से। बाइबल ने कहा कि गेहूं और घास फूस एक साथ ऊपर आते हैं। छोटा पुराना गेहूं तैयार है या बारिश के लिए भूखा है, और वो कटीली झाड़ी भी जब बारिश आती है तो कटीली झाड़ी बारिश को पाकर उतना ही खुश होती है जितने की गेहूं, लेकिन इसे उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जानेंगे। अब आओ हम प्रार्थना करें जब आप अपने फलों को जांचते हैं। अब पिता परमेश्वर, आज रात यहाँ कुछ कठिन प्रश्न थे। हो सकता है कि मैंने सही चीज को न किया हो, लेकिन मेरी जानकारी में जो सबसे अच्छा है, आप मेरे हृदय को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप इसे ग्रहण करेंगे, और अब हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्नों में यदि मैंने उन्हें ठीक तरह से नहीं किया है, तो आप लोगों के हृदय से बात करें और आप उन्हें बस वही बनाएं जहाँ उन्हें होना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि आपने मुझे बताया, लेकिन यदि मैं गलत हो सकता हूँ तो आप मुझे क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इनमें से हर एक बातों को उनके हृदय में ले लेंगे और होने पाए वे उन पर विचार करें और ऐसा सोचें, हाँ वहाँ वो कलीसिया है, वहाँ ये चीजें हैं, यही है जो बाइबल ने कहा। हो सकता है कि महिलाएं, प्रभु आप जानते हैं कि मेरा उनसे बताने का व्यक्तिगत रूप से कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी बहनों से प्रेम करता हूँ, और आप ये जानते हैं पिता, आप जानते हैं कि मैं उनके बारे में कैसा सोचता हूँ, लेकिन खड़े होकर और उन्हें कुछ गलत बताता हूँ तो मैं उनके लिए एक भरमाने वाला होऊंगा। मैं अपनी बहनों के लिए भरमाने वाला नहीं बनना चाहता, मैं उन्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, और पिता मैं इसे ठीक आपके वचन में से लेता हूँ। और अब मैं अपने भाइयों को दोष नहीं लगाता, लेकिन प्रभु मैं कहता हूँ कि वे गलत रहे हैं जब वे इन चीजों की अनुमति देते हैं, और यदि महिला अलग ही समझती है और जाकर और इसे करती है तो यह उसके ऊपर है, पास्टर दोषी नहीं होता है। अब्बा पिता, वे चीजें आपका वचन है और वे आपके लिए हैं। अब आप लोगों के हृदय से बात करें, मैं उन सभी को आपको समर्पित करता हूँ। मैं देखूंगा कि आपने जो किया है पिता, आप जानते हैं हर एक हृदय से बात करें। हम मसीह के नाम में मांगते हैं और हमारे सिर झुकने के साथ मैं सोचता हूं क्या कोई अपने हाथ को उठाएगा, कहे भाई ब्रैनम बस मुझे याद रखना कि मैं एक पूरी तरह जय पाने वाला बन सकूं और अंतिम दिन में विवाह का वस्त्र पहनकर और मसीह के साथ रह सकूं। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करें? अब हर एक जन अपना सिर नीचे करके और बस झुकाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, यह ठीक है। यहाँ परमेश्वर आपको आशीष दे मेरी बहनों, और मेरे भाई भी हाथ उठा रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। अब पिता आप उनके हाथों को देखें। मैं जानता हूँ कभी कभी आप सोचते हैं अच्छा बस ऐसी ही एक छोटी सी प्रार्थना। परमेश्वर मैं उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जिसने कल कहा था बस उस दिन की उसके घर में छोटी सी प्रार्थना जब वो लड़का मर रहा था जीने के लिए 3 हफ्ते दिमाग पर वो ट्यूमर और अब बातों को बदलने के लिए। मैं हिजकिया के बारे में सोचता हूँ जो दीवार की ओर मुंह करके रो रहा है, हे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ मुझ पर दया करें, मेरे प्रति विचार करें क्योंकि मैं सही हृदय से आपके सामने चला हूँ, यह मृत्यु से जीवन में बदल गया। परमेश्वर के पुत्र की ओर से एक पुकार, लाजरस बाहरा और एक मरा हुआ मनुष्य सामने आया। हे परमेश्वर आपने कहा बोलो मांगो और यह दिया जाएगा। जब आप कुछ भी कहते हैं तो विश्वास करें कि आप जो कहते हैं वो पूरा होगा, आपके पास वो होगा जो आप कहते हैं। अब पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जितनों ने अपने हाथ को उठाया है उसे वो मिलेगा जिसके लिए उन्होंने हाथ को उठाया था और होने पाए वे आशीष को पाएं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहनों की सहायता करें कि वे स्वयं का रहन सहन ठीक करें, जिसे शैतान टेलीविजन के जरिए से और सच्ची कहानी की पत्रिकाओं और आदि के जरिए से जिसे बहुत ही अव्यवस्थित रूप से संचालित किया गया है और बिना सेंसर वाले कार्यक्रम किस तरह से टेलीविजन पर गंदगी और अश्लीलता और इत्यादि को दिखाते हैं, जो कि आपके लिए लाखों प्राणों को जीतने का एक साधन हो सकता है, लेकिन वे किस तरह से सेंसर नहीं है और इन सारी पुरानी गंदी चीजों को बाहर निकाल दें कि वे ओह कितना दयनीय। और यह जानना कि शैतान की आत्मा अंदर आ गई है और लगभग हमारी बहनों में और उन्हें फैशन को करवाने और इस तरह के कपड़ों को पहनने को लगाने की कोशिश करते हैं, और हम पाते हैं कि हमारे भाइयों में भी हे प्रभु कि वे कैसे समझते हैं कि वे धूम्रपान कर सकते हैं और शराब पी सकते हैं और ऐसे ही करना जारी रखते हैं और फिर भी मसीही बने रहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं। उन्हें बताएं कि शैतान भी विश्वास करता है और वो बचा हुआ नहीं है, वो विश्वास करता है और कांपता है। और अब पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने हाथ न उठाया हो, हे परमेश्वर दया करना, होने पाए उनके पास अगला अवसर हो वे उनके हाथ को उठाने पाएं। हम प्रभु बोझ लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रभु हमें हमारे अपराधों और हमारे जीवन के बीते दिनों के लिए क्षमा करें, और होने पाए हम आपके आशीष को पाएं क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपको इस तरह रोके रखने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं बस सोचता हूँ प्रभु बोझ से ठीक पहले यदि कोई है प्रार्थना करवाने के लिए आता है उसके लिए प्रार्थना को करवाना चाहेगा तो ठीक है, हमें इस समय ऐसा करने में खुशी होगी यदि वहाँ कोई है जिसके लिए प्रार्थना की जाए तो ठीक है। भाई आप बहन को सीधे ऊपर लेकर आएं, यह ठीक रहेगा, और बस कुछ क्षण के लिए, और फिर हम समाप्त करने जा रहे हैं। और फिर जब हम समाप्त करते हैं तो जो लोग प्रभु भोज के लिए रुकना चाहते हैं वे रुक सकते हैं, लेकिन ठीक अभी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बाइबल ने क्या कहा, यदि भाई उठ नहीं सकता कोई बात नहीं, बस उसे वहीं बैठे रहने दें, हम उसके पास आएंगे, कोई बात नहीं, बस उसे ठीक वहीं बैठे रहने दें और हम नीचे आकर और उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ये ठीक है। तो ठीक है महाशय, बस उसे ठीक वहीं बैठे रहने दें, उसके लिए यहाँ खड़ा रहना कठिन है, इसलिए हमें ठीक उसके पास आकर खुशी होगी। अब मैं इसका एक छोटा सा उल्लेख करना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्र, देखो मैं जानता हूँ कि प्रभु ने इसे बार बार और बार बार साबित किया है, समझे मैं प्रायः एक प्रचारक नहीं हूँ, मेरे पास शिक्षा और इत्यादि नहीं है, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर जानता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन एक काम को करने के लिए मुझे बुलाया गया था, बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ, क्या आप यह विश्वास करते हैं? यहाँ तक इससे पहले कि मैं दानों के बारे में जानता, मैं यहाँ अक्सर अस्पताल जाया करता था और मैं उन नर्सों को याद करता हूँ जो कहती अब तुम चंगे हो जाओगे, देखा, और बस कुछ तो जो लोगों के लिए मेरी प्रार्थनाओं का सम्मान करने के लिए परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी रहा है। मैं कल्पना करता हूँ आज रात यदि इसकी घोषणा की जाए तो बस सारे संसार भर में हर जगह पूरी दुनिया में आलोचना हो जाएगी और कहेंगे हर एक जन जिसके लिए भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की यहाँ आकर, मैं चाहता हूँ कि आप संयुक्त राज्य सरकार को एक पत्र के साथ उत्तर दें और इसका एक विश्व भर में प्रसारण होगा। मुझे लगता है हो सकता है 40 या 50 लाख लोग उस घोषणा का उत्तर देंगे यदि इसे जान जाते थे, समझे। और वे लोग या उनमें से कुछ पहले ही मर चुके थे जिन्हें डॉक्टर और दफनाने वाले के द्वारा दफनाने के लिए तैयार किया था। उनमें से कुछ दुर्घटनाओं में मारे गए हैं, उनमें से कुछ की स्वाभाविक मृत्यु हो गई, उनमें से कुछ अंधे, लंगड़े, विकृत, अपाहिज, पीड़ित हैं, मानसिक रूप से अस्पतालों में हैं, यह भी नहीं जानते कि हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए अस्पताल में हैं, उन्हें अंदर लाए, उन्हें लेते, वे उनके तरह से लड़ते रहते और खुद को ही काट देते, यहाँ तक यह भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। 5 मिनट में सामान्य हो जाते मधुर प्रेम करने वाले लोग और अपने बाकी के दिनों में मानसिक रूप से स्वस्थ। देखा, ये क्या है? यह भाई ब्रैनम नहीं है, ये यीशु मसीह है। उसने मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने को भेजा है। अब यहाँ ये क्या है? जेफरसन विले में यह बहुत सफल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों है? अब मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मेरे कुछ सबसे नजदीकी और सबसे अच्छे मित्र यहाँ इस शहर में हैं। हालांकि अपने आप में शहर की स्थिति मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं इस परिस्थिति को पसंद नहीं करता और कभी नहीं किया। जब मैं छोटा लड़का था, बैठा हुआ था, अपने इतिहास की किताबें पढ़ रहा था, मैंने कहा किसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखा, मैं जेफरसन विले को पसंद नहीं करता। यह एक दलदल है, यह यहाँ नीचे है, यह बस बहुत ही दलदली है और यह बहुत ही खराब है। यहाँ स्पाइकट नॉब्स के ऊपर या कहीं तो ऊपर जाकर, और यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे न्यू एल्बानी और जेफरसन विले की ओर देखें। यहाँ देखें, डॉक्टर यहाँ तक कह रहे हैं कि इस घाटी के लोग परिस्थिति की वजह से एनीमिया या खून की कमी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ एक छोटी महिला श्रीमती मॉर्गन कैंसर से चंगी हुई थी, अपने कुत्ते को यहाँ दवा खाने ले गई, सोचा कि उसे जानवरों की खाज खुजली है। आप जानते हैं कि यह क्या था? जंगली पौधों पर कीड़ों और चीजों का नीचे बैठ जाना जहाँ से होकर ये गुजरी, यह सबसे अस्वस्थ जगह है। एक व्यक्ति सेना में था, यहाँ गया और उसे अस्थमा हुआ था, यहाँ फ्लोरिडा में गया और उसकी आंखें बहुत ही काली हो गई और वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अब तुम एक लड़ाई में रहे हो, क्या तुम नहीं रहे हो? उसने कहा, नहीं महाशय, मैं नहीं था। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है तो उसका नाम हर्बी है। अब यदि मैं बस सोच सकता हूँ, ये यूनियन नेशनल बैंक में है न्यू अल्बनी में। वो एक बैंक में रुपया लेने या देने वाला है, बस वहाँ जाकर और जो कहता है उसे देखो, हर्बी, उससे पूछें। और उसने कहा, वो गया, उसने कहा, डॉक्टर, उसने कहा मुझे साइनस हो गया है, और उसने उसकी जांच की, कहा ये सही है। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम एक लड़ाई में थे। कहा, लड़के तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, आप उस जगह को नहीं जानते होंगे। कहा, मैं लुइसविले केंटकी के एक छोटे से शहर में रहता हूँ जिसे न्यू अल्बनी इंडियाना कहा जाता है। कहा, आपके कहने का मतलब है कि आपने यहाँ मियामी में इस खारे पानी में साइनस की बीमारी को लिया है आने से? कहा, यदि आप जेफरसन विले इंडियाना या न्यू अल्बनी इंडियाना में रह सकते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, संयुक्त राज्य की सेना आपको भेज देगी। ऐसा ही है, देखा, यह दुनिया में वहाँ सबसे अस्वस्थ जगह है जिसे मैं जानता हूँ, यदि नहीं तो यह किसी मलेरिया के दलदल में होगा। देखा, और मेरे यहाँ पर मित्र हैं, यहाँ देखो, मैं बस उनका नाम इस तरह नहीं बुला सकता हूँ। मेरे मित्र डॉक्टर सैम अडायर को देखें तो ठीक है, वहाँ माइक एगन है जो वहाँ बैठे हैं। ओह प्रभु, मैं कितनों का नाम ले सकता हूँ, बस सैकड़ों सच्चे मित्र और मेरे पुराने दोस्त जो मेरे गहरे मित्र रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत से नए मित्र को पा सकता हूँ, पुराने मित्र की जगह कोई भी नहीं लेगा, आप ये जानते हैं। वहाँ पीछे मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है, धरती पर ज्यादा दिन नहीं, वो अब उसके 60 के आगे की उम्र में है। वहाँ मेरी पत्नी की माँ है, 70-71 वर्ष चल रहा है। मैं सोचता हूँ आज रात यहाँ पीछे कहीं तो बैठी हुई है और वहाँ उसे छोड़ दें। मेरे पिता को यहाँ दफनाया गया है, पत्नी को यहाँ वॉलनट रीच पर दफनाया गया, मेरी बच्ची को वहाँ गाड़ा गया है। समझे मेरा क्या मतलब है? मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता और मैं सोचता हूँ कि जल्द ही मुझे तुरंत ही जाना होगा। देखिए, क्योंकि यह मेरे लिए आ रहा है, मैं इसे पुलपिट पर से कहता हूँ और मेरी बाइबल सदा से है। जब मैंने अपनी पत्नी को बताया, जब वे हमें उस पास्टर के निवास स्थान के निर्माण के लिए पैसे देते हैं जिसे मैंने इस कलीसिया को सौंप दिया, यह कलीसिया उस पास्टर के निवास स्थान की मालिक है। यहाँ नीचे जाएं, देखें कि क्या ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसे खुद के लिए नहीं लेता। अब जब मैं वहाँ निर्माण करने जा रहा था, मेडा ने कहा, मैं अपनी माँ के कारण यही रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, प्रिय, बिल्कुल निश्चित रूप से हम चाहते हैं, हमें इस बात के लिए दुख होगा। देखो, ये काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है, अलग हो जाओ, मुझे इसे करना होगा। और उसने कहा, तो ठीक है, मेरी माँ। मैंने कहा, मेरी भी माँ है, परंतु जो अपनों को नहीं छोड़ेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरा कहलाने के योग्य नहीं है। और यही सच है। किसी दिन शीघ्र ही मैं महसूस करता हूँ कि मुझे जाना होगा, यानी चले जाना होगा। लेकिन यहाँ वो जरिया है, यहाँ की सभाएं काम नहीं करेंगी, यह काम नहीं करेंगी जैसे यह कहीं और करती हैं। और जो कोई भी सभा में रहा है वो जानता है कि यह सच है, क्योंकि यह ठीक यहाँ मेरे अपने गृह नगर में है। ऐसा ही है। यीशु ने उसी चीज को कहा जब वो आया। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति कौन है? क्या यह यहाँ बड़े का लड़का नहीं है? वो कभी भी किसी स्कूल में गया है? उसे यह शिक्षा कहाँ से मिली? अब मुझे देखने दो, तुमने कहा था कि तुमने यहाँ अद्भुत काम किए हैं। मुझे तुम्हें यहाँ उसी काम को करते हुए देखने दो जो काम तूने कफरनहूम में किया। ये मुझे तुम्हें यहाँ करते हुए देखने दो। यीशु ने कहा, उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। उसने मुड़कर और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक भविष्यवक्ता इनाम के बिना नहीं होता सिवाय वह अपने ही देश में अपने लोगों के बीच हो। क्या यह सही है? और हम जानते हैं, वहाँ देखें, फिन्नी को लो, संकी, मोडी को लें, जॉन वेस्ली को ही ले लीजिए, वह इसे कभी नहीं कर सका। देखो, जब तक उसने अपना देश नहीं छोड़ा। मूडी की ओर देखें, जब मूडी एक बोस्टन जूते का चमरकार बिल्कुल नहीं बढ़ सका, वह शिकागो आ गया प्रसिद्ध होने से पहले। देखा, उसे उसके अपनों से लेना था। आपको ऐसा हमेशा ही करना होगा। लेकिन अब यहाँ परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा यदि आप भूल जाएं कि यह विलियम ब्रैनम है। देखा, यदि आप भूल जाएं कि यह विलियम ब्रैनम का इसमें कुछ लेना देना है, बस केवल एक खड़ा होगा और जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, यह यीशु मसीह है, जो पहले से ही वह कर चुका है जो आपने करने के लिए मांगा है, यदि आप केवल इस पर विश्वास करें। देखा, ऐसा करने के लिए कुछ नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गवाही को देने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ आपके साथ साथ रहने के बाद, और आप मेरी हर कमजोरी को जानते हैं और मेरी हर गलती को जानते हैं, और आप जानते हैं कि ठीक इसी शहर में परमेश्वर ने क्या किया है। यह शहर न्याय के दिन किसी दिन बड़ी कीमत चुकाएगा, क्योंकि ठीक यहाँ सैकड़ों और सैकड़ों प्रमुख चंगाइयाँ हुई हैं। यह सही है, ठीक यहीं पर चिन्ह और अद्भुत कार्य और वहाँ नीचे दूत का उपस्थित होना और अखबारों में बातों को फैलाया और हर एक चीज, और फिर भी लोग नहीं, ऐसा क्यों है? अब किसी दिन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा अंत क्या होगा, क्या यह समाप्त हुआ, क्या यह बस होने पर है? मैं 48 वर्ष का हूँ, क्या यह अब खत्म होने पर है? मैं यह सोचता हूँ, यदि ऐसा है, देखो संसार वहाँ उस तस्वीर को क्यों नहीं समझ पाया, उन्होंने इसे जल्दी से क्यों नहीं पकड़ा, वे इन अन्य चीजों को क्यों नहीं पकड़ पाते, वे इन भविष्यवक्ताओं और चीजों को क्यों नहीं पकड़ पाते? आप जानते हैं, वे अभी इसे नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन मैं संसार को छोड़ने जा रहा हूँ, और जब मैं चला जाऊंगा तब वे इसे पहचान लेंगे। आप में से कुछ नौजवान लोगों को मेरे जाने के बाद यह समझ आएगी, समझे? लेकिन परमेश्वर इसे अभी करने की अनुमति नहीं देगा। देखो, क्या आप समझ गए मेरा क्या मतलब है? बस एक छोटी लड़की का मणिबंध, किसी के पास भी ये हो सकता है। और मैं सोचता हूँ कि भाई सॉटमैन ने कहा कि पिछली बार जब वो यहाँ थे तो उन्होंने यहाँ एक बाइबल छोड़ी थी। मैं सोचता हूँ किसी को भी एक बाइबल मिली है, यहाँ साथ में एक भूली हुई बाइबल मिली है। यदि आपको मिली है तो यह कनाडा के भाई फ्रेड सॉटमैन की है। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दयावंत होना, जैसे संगीत मधुरता से बजता है और भाई नेविल तेल से अभिषेक करेंगे, मैं यीशु के नाम में बीमारों पर हाथ रखने जा रहा हूँ। इसे प्रदान करें प्रभु उनकी चंगाई के लिए। आमीन। हर कोई प्रार्थना करे, अब हर एक जन तो ठीक है। प्रभु उस एक छोटे के लिए, जबकि उसके दादा उसके लिए यहाँ खड़े हैं, उसे दूध से एलर्जी है, सभी दूध से, लेकिन आपके पास सारी सामर्थ है और वो छोटा बालक अपने लिए विश्वास नहीं कर सकता। और फिर प्रभु मुझे इसके लिए विश्वास है माता पिता और दादा दादी के साथ, और हम कहते हैं यीशु के नाम में कि वो बालक दूध पी सकेगा और परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकेगा। आमीन, यह उस तरह से होगा। ओह परमेश्वर, वह अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं उसके साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके पिता को चंगा करें और उसे वो दें जो उसे चाहिए, मसीह के नाम में, आमीन। अब क्या ये साधारण नहीं है? लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यही है जो लोग वे एक बड़ी चीज के लिए देखते हैं और वे इसे पेचीदा बनाते हैं। परमेश्वर इसे सरल बनाता है, आप इसे पेचीदा बनाते हैं और इससे चूक जाते हैं। देखा, बस इसे सरल होने दें, जैसा परमेश्वर ने कहा। ये चिन्ह उनके पीछे होंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे, जैसा परमेश्वर ने कहा। हम इस स्त्री पर हाथ रखते हैं प्रभु, यह हमारी बहन यहाँ खड़ी हुई है, और होने पाए जैसा हम मांगते हैं, वह यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, आमीन। पिता, जैसा कि हम अपनी बहन पर हाथ को रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, बाइबल और प्रभु की शिक्षा को मानने में, होने पाए वो चंगी हो जाए। पिता, मसीह के नाम में हम अपनी बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बहन को चंगा करेंगे। जब हम आपके वचन की आज्ञा में हैं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो जो हो कर सकती, आमीन। पिता, हम अपनी बहन पर हाथ रखते हैं और ये मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में कि आप उसे चंगा करेंगे और उसे पूरी तरह ठीक करेंगे, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में हम अपने भाई पर हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए चंगा करें। पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम बहन को अभिषेक करते हैं और उस पर हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने भाई पर हाथ रखते हैं, हम इसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, जैसा कि हम उसे अभिषेक करते हैं, कि आप उसे चंगा करेंगे। पिता, यहाँ उनकी प्रिय पत्नी, उसका अभिषेक करते हैं और उस पर हाथ को रखते हैं, यह मांगते हुए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर, हम छोटे एडिट का अभिषेक करते हैं, उस पर हाथ को रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि आप उसके विनती को स्वीकार करेंगे। पिता, उसकी माँ के लिए हम उसका भी अभिषेक करते हैं और उस पर हाथ रखते हैं और उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो चंगी हो जाए। पिता, हम इस परिवार के इस अनमोल रत्न का अभिषेक करते हैं, छोटे से हृदय की धड़कन, प्रभु यीशु के नाम में। एक दिन उसको समर्पित किया गया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे चंगा करेंगे। ओ परमेश्वर, आप हमारी बहन की विनती को जानते हैं और हम आपको उसके साहसी विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं। अब होने पाए वे चीजें जो उसने मांगी है कि जब वो छोटी थी तब उसके साथ खेलती थी, और परमेश्वर होने पाए शत्रु स्त्री को छोड़ दे, और होने पाए प्रभु यह ठीक होकर घर लौट आए। हम उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसके लिए उसने विनती की है। आपने प्रतिज्ञा की है, यदि तुम मेरे नाम में कुछ भी मांगते हो तो मैं इसे करूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विनती को यीशु के नाम में स्वीकार करेंगे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु, जैसे मेरे भाई के माथे में यह नस खत्म हो रही है, हम जीवन को आगे विकसित होने के लिए मांगते हैं। जब हम उस पर हाथ रखते हैं और इसे मांगते हैं यीशु के नाम में कि वो नस ठीक हो जाए। पिता परमेश्वर, हम अपनी बहन का तेल से अभिषेक करते हुए उस पर हाथ रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता, जैसे कि हमारी बहन बहुत सी महान सफलताओं में खड़ी रही, आपने आगे लाया है, वह आपके सेवकों में से एक के लिए खड़ी है। एक सेवक बहुत ही परेशान, हमारा सहानुभूति का हृदय उसके प्रति जाता है, हम जानते हैं कि वो किस बात से होकर जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप हमारी बहन को अभिषेक करेंगे जो उसके लिए यहाँ खड़ी हुई है, और उस भाई को चंगाई के लिए उसका अभिषेक करें। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु जानता है, अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। यह वास्तव में प्रभु का अभिषेक है। प्रभु परमेश्वर, इस महिला को एक दुष्ट आत्मा से बचाए जाने के बाद जिससे वो वर्षों से लड़ी थी, एक दिन आप उसे वहाँ घर के पास से लेकर आ रहे थे और तब आत्मा नीचे उतर आया। यहोवा यो कहता है, उसके बाद वो रो पड़ी, वह वेदी पर गिर गई। उसने वह सब कुछ किया जो वो जानती थी कि कैसे करना है, लेकिन इसने यहोवा यो कहता है को लिया। अब वो अपनी बहन के बालक के लिए आ रही है जो उल्टी को कर रहा है, जो चल नहीं पा रहा है, जो एक वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उसे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की आशीष को प्रदान करेंगे। बहन उसके लिए बहुत खुश है, अलग भी दिख रही है, और आप अब मरने से बहुत दूर हैं, क्या आप नहीं हैं? पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसका अभिषेक करते हैं तो आप हमारी बहन को आशीष देंगे, और उस पर हाथ रखते हैं और मांगते हैं कि इस बात को आपने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हम विश्वासी होना अंगीकार करते हैं प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ करें यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, इस छोटी महिला के हृदय को जानते हुए जैसा उसने उसे उंडेल दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर दया करें और उसने जो मांगा है उसे पूरा करें। हे पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, विशेष रूप से उसके लड़के के लिए, परमेश्वर मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आप इन चीजों को प्रदान करें। मेरे पूरे हृदय से मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, जब हम इस स्त्री का तेल से अभिषेक करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगा करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उसे ठीक कर देंगे। शायद आपका नाम वेस्ट तो नहीं, क्या है? पिता, हम छोटी महिला के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपने पिता के लिए मांग रही है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके पिता को प्रदान करें, उसके हृदय पर पुकार को। प्रभु, वह चाहती है वो बच जाए, वो नहीं चाहती कि वो संसार में रहे जैसे कि वो है, यह उसकी अपनी संतान, उसका वंशज। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उस पर दया करेंगे मसीह के नाम में। आपको आशीष दे मेरी बेटी, होने पाए परमेश्वर आपको वो दे जो आपने मांगा है। प्रिय परमेश्वर, हम उसके लिए दया की प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं कि आप दयावंत होना जैसा कि हम उसका अभिषेक करते हैं।